देखें, हम अब तक कोशिश ये करते रहे हैं कि वेस्टर्न फिलॉसफी की मुख्तलिफ डायमेंशंस को डिस्कस करते रहे हैं, लेकिन उसका नतीजे में महसूस ये होता है कि वो एक कोहेरेंट व्यू नहीं बन पाता स्टूडेंट के जहन में, और कुछ बुनियादी की कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो रिपीटेडली इस्तेमाल होते हैं इस डिस्कशन और डिस्कोर्स के अंदर। तो पहले हम ये चाहते हैं कि उनकी क्लैरिफिकेशन हो जाए, जो कि ऑथेंटिक इंटरप्रिटेशन या ऑथेंटिक मीनिंग्स या अंडरस्टैंडिंग है उन टर्म्स की जो कि रिगरसली इस्तेमाल होते हैं डिस्कोर्स के अंदर। पहले उन कॉन्सेप्ट्स और उन टर्म्स के बारे में लोग क्लियर हो जाएं, और उसके बाद फिर हम एक वेस्टर्न फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन को सप्पन सप्पन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं उन्हीं कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के अंदर जिनको हम पहले से डिस्कस करते हैं। तो पहले हम जो पहले शुरू के कुछ सेशन होंगे वो कंसेप्चुअल नोयत के होंगे, जिसमें बुनियादी कॉन्सेप्ट जो इस्तेमाल होते हैं कंटेम्प्रेरी फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स में, उनको पहले उनकी अपनी तारीखियत और उनकी अपनी हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिटी में समझ लिया जाए, और उसके बाद फिर उन्हें इस्तेमाल जब हम करते हैं जो भी हमारी डिस्कोर्स होती है उसके अंदर, उसके तनाजुर में ही रखकर उनको समझने की कोशिश की जाए। और जब हम ये कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेंगे तो उसके बाद फिर हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन को चार लेवल्स के ऊपर पढ़ेंगे। पहले हम क्लासिकल पीरियड को देखेंगे, लेकिन उसके बाद हम उसको क्रिश्चियन या स्कॉलेस्टिक पीरियड के अंदर देखेंगे, उसके बाद हम मॉडर्निज्म के अंदर, और फिर पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर। तो चार मुख्तलिफ डोमेन्स के अंदर हम वेस्टर्न थॉट को समझने की कोशिश करेंगे, और हम कुछ ऐसे बुनियादी सवाल उठाएंगे कि जब हम कहते हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन तो उसकी बुनियाद कहाँ से शुरू होती है, क्या ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन से शुरू होती है, या क्रिश्चियन स्कॉलेस्टिक फिलॉसफी से शुरू होती है, या जुडायो क्रिश्चियन सिविलाइजेशन से वो डिटर्मिन होती है, या एनलाइटनमेंट से। तो उसमें हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे उन पैरामीटर्स को जिनकी बुनियाद पर हम डिफ्रेंशिएट कर सकें ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन को क्रिश्चियन सिविलाइजेशन से, और क्रिश्चियन सिविलाइजेशन को एनलाइटनमेंट या यूरोसेंट्रिक सिविलाइजेशन जिसे हम आज वेस्टर्न सिविलाइजेशन के तौर पर पहचानते हैं, और इसकी बुनियाद पर हम मुमय्यज़ भी कर सकेंगे कि किस तरीके से ग्रीको रोमन आइडियल्स या ग्रैंड नरेटिव से क्रिश्चियन ग्रैंड नरेटिव डिफरेंट थे, और किस तरह क्रिश्चियन ग्रैंड नरेटिव से डिफरेंट है एनलाइटनमेंट के ग्रैंड नरेटिव। तो इससे जो है हमें काफ़ी समझने में मदद मिलेगी कि क्या मौजूदा जो एंटेगनिज्म है मुसलमानों के दरमियान और वेस्टर्न सिविलाइजेशन के दरमियान, क्या उसकी रूट्स क्रिश्चियन रूट्स हैं या जुडाइक रूट्स हैं, या ये एक अलग किस्म की सिविलाइजेशन है। तो इस पे जाहिर है कि मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन हैं, जाहिर है कोई एक पोजीशन अब इस बारे में नहीं ले सकते, लेकिन मेरी जो पोजीशन है या जो मैं समझता हूँ कि रिलेटिवली बेहतर पोजीशन है इस इशू को देखने की, वो पेश कर दी जाएगी आप लोगों के सामने। जिसको इस पर एतराज है उन एतराजात को हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ये कि जाहिर है कि हिस्ट्री को देखने का कोई एक तरीका या एक परस्पेक्टिव नहीं होता, और जिस फिनोमेना से आज हम डील कर रहे हैं उसके बारे में बर्नर्ड लुविस कहता है कि द हिस्ट्री हैज नॉट ओनली बीन प्रिजर्व्ड बट हिस्ट्री हैज बीन प्रिजर्व्ड टू डीकंस्ट्रक्ट हिस्ट्री। हिस्ट्री को इस तरह महफूज किया गया है कि उसकी असल को डीकंस्ट्रक्ट किया जाए। तो दो प्रोसेस साथ साथ चल रहे हैं, प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्ट्री, प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्ट्री फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द हिस्ट्री, और री इंटरप्रिटेशन है हिस्ट्री की। तो ये एक बहुत ही खौफनाक किस्म का पैराडाइम है, और एक खास किस्म का फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री आपको जहन में क्लियर होनी चाहिए उस पूरे डिस्कोर्स को समझने के लिए। तो जाहिर है कि हम ये समझते हैं कि पहले तो आपको कॉन्सेप्ट जरा क्लियर हों, फिलोसॉफिकली ये जो टर्म इस्तेमाल होती है इसका क्या मतलब होता है, ऑथेंटिकली किसी भी लिटरेचर के अंदर वो मीनिंग्स उन टर्म्स के यही लिए जाते हैं। जब वो ये क्लियर हो जाए तो फिर उसके बाद हम इन चार स्टेजेस के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। फिर हम एक तीसरी स्टेज के ऊपर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये रिलीजन, साइंस और फिलॉसफी के जो डोमेन्स हैं और जो इनके ओवरलैपिंग डोमेन्स हैं उनको भी हम डिस्कस कर लें कि भाई रिलीजन की जो प्रायोरिटीज और फिलॉसफी की प्रायोरिटीज और साइंस की प्रायोरिटीज बहुत जगह पर ओवरलैप करती हैं, तो कहीं पर लगता है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कहीं पर लगता है कि कॉन्ट्रडिक्ट्री हैं, एक दूसरे को रिजेक्ट करते हैं, कहीं पर लगता है कि पैरेलल है, साथ साथ चलते हैं, ना ओवरलैप करते हैं ना रिकनसाइल करते हैं, अपने अपने पैराडाइम्स हैं सबके, तो उनको भी हम देखेंगे। लेकिन उसके लिए जिस सतह की आपको कंसेप्चुअल ग्राउंडिंग चाहिए पहले हम उस पर तवज्जो देंगे, क्योंकि हमने अब तक उस पर तवज्जो दी नहीं है और हम ये समझते रहे हैं कि लोग रीडिंग कर कर जो है उन चीज़ों को ओवरकम कर लेंगे, लेकिन चूंकि वो बार बार वो टर्म्स रिपीट होती हैं और स्टूडेंट जब क्वेश्चन करते हैं तो पता चलता है कि वो उन कॉन्सेप्ट को मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो जाहिर है कि सिर्फ इस दायरे में उनको गुफ्तगू नहीं करनी, यहाँ से बाहर निकल कर बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों में बैठ के भी उनको गुफ्तगू करनी है, तो उनके कॉन्सेप्ट इतना कम से कम क्लियर हो कि वो किसी किस्म के डिस्कोर्स में शामिल हो सकें और उसको समझ सकें। ठीक है, तो खाली तो आज जो है वो मैं शुरू करूंगा, पहले जो तीन बुनियादी फलसफे की ब्रांचेज हैं, इन तीनों ब्रांचेज को और उसको इस तरह से लेके चलूंगा कि जिंदगी के साथ उसका ताल्लुक समझ में आ जाए। देखिए, तीन तरह के बुनियादी सवालात हैं जो हर इंसान के जहन में होते हैं। ठीक है, तीन सवालात। नंबर वन, व्हाट इज रियलिटी, हकीकत क्या है। दूसरा सवाल इंसान के जहन में ये होता है कि इस हकीकत को मैं कैसे जान सकता हूँ। ठीक है, जैसे जो भी हकीकत है उस हकीकत को मैं जान कैसे सकता हूँ। जाहिर है कि हकीकत को जब तक मैं इदराक के हकीकत नहीं होगा तो हकीकत के होने या ना होने से मैं तो आशना नहीं हो सकता। तो हाउ एम गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट रियलिटी, दैट इज द सेकेंड क्वेश्चन। द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट ऑट टू बी एंड व्हाट ऑट नॉट टू बी, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। ये तीन बुनियादी सवाल होते हैं जो कि हर इंसान, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने जिंदगी में फलसफा पढ़ा या नहीं पढ़ा, फलसफा पढ़ने नहीं पढ़ने से इसका कोई ताल्लुक नहीं, हर इंसान चाहे उसकी बेसिक एजुकेशन हुई है या एजुकेशन नहीं हुई, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, न सिर्फ ये तीन सवालात उठाता है अपनी जिंदगी में और इन तीनों सवालात के जवाब भी अपने जहन में रखता है। What is reality? How I am going to understand that reality? And the third question is, what ought to be and what ought not to be? इन तीन सवालात के गिर्द इंसान की जिंदगी गुजरती है। और हाइडेगर कहता है, we cannot make our life meaningful without answering these questions. We cannot answer these questions. That means that we cannot make our existence meaningful in this world. जब तक कि आप अपनी जिंदगी के कोई मायने तयन नहीं कर सकते, जब उस वक्त तक जब तक कि आप इन सवालात के जवाब नहीं देते। पूरी 2500 साल की जो फलसफे की तारीख है उसमें फलसफियों ने इन तीन सवालात के बाद, बड़े फलसफी जो हैं उन्होंने इन तीनों सवालात के जवाब दिए एक मजबूत सिस्टम के अंदर, और जो बड़े फलसफी होते हैं जो इन तीनों सवालात के इस तरह जवाब देते हैं कि उनका आपस में एक ताल्लुक होता है, उनको हम सिस्टम बिल्डर्स कहते हैं। सिस्टम बिल्डर्स ऐसा फलसफी जिसने एक पूरा सिस्टम खड़ा किया, उसने ये भी बताया कि हकीकत क्या है, उसने ये भी बताया कि हकीकत को कैसे जाना जाएगा, और उसने ये भी बता दिया कि अच्छाई बुराई क्या है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ये कहलाते हैं सिस्टम बिल्डर। ये कम खाल खाल इस सतह के फलसफी आपको मिलेंगे जो इस सतह पे जाके काम करते हैं, लेकिन जो भी इस सतह पे जाता है वो एक बड़ा फलसफी होता है कि वो इन तीनों सवालों के कोहेरेंटली जवाब देता है। लेकिन बाज ऐसे फलसफी मिलेंगे जो सिर्फ एक डायमेंशन को फोकस करेंगे, बाज तीसरी सतह के सवाल को डील करेंगे और वहीं पे अपनी बात खत्म कर देंगे, बाज दूसरी सतह के सवाल को उठाएंगे उसी पे खत्म कर देंगे, बाज पहली सतह पे जाएंगे उसी पे खत्म कर देंगे। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि अगर उसने तीसरी सतह का सवाल एड्रेस किया है तो पहले दो सवाल के जवाब प्रिज्यूम करता है, अगर वो दूसरी सतह का सवाल का जवाब दे रहा है तो پہلا اور تیسری سطح کے جوابات اس سے پہلے سے پریزیوم کر رکھیں. جب آپ اس کا فلسفہ پڑھیں گے تو اوور ویلمنگلی آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ حقیقت کا اس کے پاس کیا تصور ہے اور اچھائی برائی کا کیا معیار ہے. تو یہ تینوں سوال جو ہیں آرگینکلی لنکڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, اور ایک ایسا آپ کو مجبور کرتے ہیں, ایک دوسرے کی طرف پش کرتے ہیں کہ آپ مفر نہیں ہے آپ کے پاس ان سوالات کو انگیج کیے بغیر. صحیح. تو پہلا سوال جو ہے اسے ہم ٹیکنیکل ٹرم میں میٹافیزیکل کوشچن کہتے ہیں, دا کوشچن کنسرننگ ریالٹی. مابعد الطبیعتی سوال ہے. جب میں حقیقت سے بحث کرتا ہوں, حقیقت کی بنیادوں سے بحث کرتا ہوں, حقیقت کے وجود سے بحث کرتا ہوں, حقیقت کے تعلق سے بحث کرتا ہوں, تو میرا ڈومین جو فلسفے میں ہے وہ میٹافیزکس ہے, میٹافیزیکل ڈسکورس میں ہوں. اب آپ کہیں کہ یار یہ تو بہت دقیق قسم کی بحث ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ایک ایسا آدمی جس نے زندگی میں کبھی فلسفہ نہیں بلکہ کوئی کتاب نہیں پڑھی, اس کو بھی آپ روک لیں, اس سے پوچھیں حقیقت کا کیا تصور ہے, تو حقیقت کا کوئی نہ کوئی تصور اس کے ذہن میں ہوگا. جس چیز کو بھی وہ حقیقت سمجھتا ہے نا, اس کا تصور اس کے ذہن میں ہوگا. وہ فلسفی نہیں ہے, اس کو آرٹیکولیٹ نہیں کر سکتا, لیکن وہ پوری زندگی جو اس کی تگودو ہوتی ہے, اس کی جد و جہد جو ہوتی ہے, وہ اسی حقیقت کے حصول یا اسی حقیقت کی تعمیر میں مصروف عمل ہوتا ہے, ورنہ وہ اپنی زندگی کو میننگ فل نہیں دے. اور انسان جو ہوتا ہے وہ سیلف کانشیس بینگ ہے, چاہے وہ افریقن زولو ٹرائب کا ہی انسان ہو, وہ سیلف کانشیس ہے, وہ جانتا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے, وہ کیا ہے, وہ حقیقت کے ساتھ کیا تعلق رکھتا ہے. تو جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے اس حقیقت کے ارد گرد ہی وہ اپنی پوری زندگی کے تانے بانے بنتا ہے. اگر آپ کو ٹریس کرنا ہے کہ اس کا حقیقت کا کیا تصور ہے بغیر فلسفے کو ایڈریس کیے, تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ جب وہ مر جائے گا تو وہ کیا کرے گا, کیا ہوا. فلسفے کوئی آدمی ہے جسے میں پوچھوں کہ بھائی تم نے کیا زندگی میں یہ سوال اٹھائے, عام طور پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں اٹھائے. یہ میں آپ کو سیریسلی بتا رہا ہوں کہ اچھے پڑھے لکھے, یعنی کہ اگر ہم نے وہ کی کانفرنس اور ورک شاپ کی, سارے ڈاکٹرس سینئر ڈاکٹرس, میں نے کہا انہوں نے کہا نہیں ہمیں تو یہ ٹیکنیکل قسم کے کوشچنس نہیں اٹھائے ہم نے. تو میں نے کہا بھائی جو بالکل کلیئر ہے اس بارے میں کہ اس نے زندگی میں کبھی یہ سوال نہیں اٹھایا وہ اپنا ہاتھ اٹھا. تو ایک صاحب نے اٹھایا, میں نے کہا بھائی آپ یہ مجھے بتائیں جب آپ مر جائیں گے تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا. کیا ہوگا, کیا مجھے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور جو بھی میرے زندگی میں میں نے کیا اس کی بنیاد پہ فیصلہ ہو جائے گا. تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف آپ نے یہ حقیقت کا تصور آپ کے پاس موجود ہے بلکہ آپ کو یہی پتا ہے کہ اس حقیقت کے ساتھ آپ کا تعلق کس نوعیت کا ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ کا جو تصور ہے حقیقت کا, اس میں سب سے زیادہ حقیقی چیز جو ہے وہ آپ کے سسٹم میں گاڈ ہے. کیوں, دیکھیں نا اس کمرے میں سب کچھ حقیقی ہے, ہم سب بھی حقیقی ہیں, یہ کتاب یہ سب کچھ, لیکن اگر میں مر جاؤں تو میرے لیے سب کچھ ارریلیونٹ ہو جائے گا نا. یہ میرا پڑھا لکھا ہونا یا جاہل ہونا یا اس یونیورسٹی کا ٹیچر ہونا یا پاکستانی ہونا یا ایک حیدرآبادی فیملی میں پیدا ہو جانا, یہ سب جو میری حقیقت ہے ارریلیونٹ ہے نا اس وقت جب میں مر جاؤں, میرے لیے کم از کم. اس کے لیے صرف یہی ریلیونٹ ہوگا کہ خدا میرے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے, لیٹ سپوز. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس حقیقت کا ایک تصور موجود ہے. یہ کہے کہ وہ تصور موجود نہیں ہے, تصور اس کے پاس موجود ہے. تو میٹافیزیکل کوشچن کو ٹیکنیکلی جب ہم ڈیل کرتے ہیں فلسفے کے اندر, تو ہم اس کو دو حصوں میں بریک کر دیتے ہیں میٹافیزکس کو. ایک کو ہم کہتے ہیں کاسمالوجی اور ایک کو ہم کہتے ہیں اونٹالوجی. یعنی کہ یو کین ایڈریس میٹافیزیکل کوشچن ایٹ ٹو ڈفرنٹ لیول, ون از دی کاسمولوجیکل لیول, دی کاسمالوجی, دی ادر از اونٹالوجی. آپ اونٹالوجی, اونٹولوجیکل اور کاسمولوجیکل انالیسس کے بغیر میٹافیزیکل پرابلم کو ایڈریس نہیں کرتے. ہاں میں دونوں کو الگ الگ ایکسپلین کروں. مثلاً اگر فرض کیا کہ میں کاسمالوجی پہلے لیتے ہیں, کاسمالوجی ڈیلز ود دی آرڈرنگ آف بینگ. کاسمالوجی بحث کرتی ہے حقیقتوں کی ترتیب سے. کاسمالوجی فلسفے کی وہ شاخ ہے جو حقیقتوں کی ترتیب سے بحث کرتی ہے. یعنی کہ دیکھیں اس کمرے میں سب حقیقتیں ہیں, یہ حقیقت ہے نا, یہ بھی حقیقت ہے, یہ بھی حقیقت ہے, میں بھی حقیقت ہوں, یہ سب حقیقت, لیکن میرے ذہن میں حقیقتوں کی ایک ترتیب ہوگی.
ریلیٹیوٹی تھیوری میں اسی کیجوالٹی کے نام سے وہاں پر وہ کرتے ہیں ٹائم آرڈرنگ جو ہے,
بالکل
وہی پھر کوانٹم فیلڈ تھیوری پہ جا کے ڈائسن کرونولوجیکل آرڈرنگ بن جاتی ہے.
بالکل, آرڈرنگ کے بغیر کین ناٹ میک اسٹرکچر پاسبل. اسی اسٹرکچر, وہ جو آرڈرنگ ہوتی ہے وہی اسٹرکچر کے پیرامیٹر ڈیٹرمن کر دیتی ہے. اب اگر فرض یہ ہے کہ اس کمرے کے اندر مجھے یہ کہا جائے کہ آپ حقیقتوں کی ترتیب کریں, تو اس کی دو شرائط, ایک پہلے میں ان کو حقیقت مان لوں, دوسرا مجھے پتا ہو کہ یہ کیا ہے, ابھی تو میں اسے ترتیب میں رکھ سکوں گا کہ میرے لیے یہ زیادہ اہم ہے, یہ زیادہ اہم ہے, انسان زیادہ اہم ہے, یہ پنکھا زیادہ اہم ہے. تو اہمیت کی بنیاد پر اگر میں ترتیب دے رہا ہوں, حیثیت کی بنیاد پہ میں ترتیب دے رہا ہوں, کوانٹٹی کی بنیاد پہ میں 10,000 بنیادوں پہ میں ترتیب دے سکتا ہوں چیزوں. یعنی کہ ہمارے ایک دوست سے کتاب تلاش کرنے گئے تو کتاب تلاش کرتے رہے جب ہم فرسٹ ایئر میں تھے, تو بڑا وہ ناراض ہو گیا. وہ اس نے کہا بھائی آپ کس قسم کی کتاب کی تلاش میں ہیں, دیکھنے تو جاہل لگ رہا تھا. اس نے کہا مجھے ایک ایسی کتاب چاہیے جو بہت موٹی ہے, بہت خوبصورت ہو اور بہت سستی ہو. اس نے کہا بھائی ایسی کوئی کتاب موجود ہے. اس کو کتاب پڑھنے وڑھنے سے کوئی سروکار نہیں, بس وہ ہاتھ میں لے کے گھومنا تھا. اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں, اس کو زحامت تعلق, موٹی کتاب, موٹی کتاب چاہیے اس کو جو خوبصورت پیپر بیک میں, یہ اس کی ذہنی.
چھوٹا سا لطیفہ میں آپ کو بتا دوں اسی کے حوالے سے. ایک صاحب میرے پاس تھیسس کے لیے آئے تو انہوں نے کہا کہ جناب 3 کریٹ آور کی سن کے میں 50 مدنی کے درختوں کا کروں گا. اچھا 6 کریٹ آور کے میں 100 درختوں کا.
بالکل
لینئر انہوں نے ایک ماڈل لگا دیا.
بالکل, تو آپ حقیقت کی جو ترتیب ہوتی ہے, اب اسی طریقے سے وہ جو آدمی ہے جس نے کہا تھا کہ جب میں مر جاؤں گا تو خدا میرا معاملہ کرے گا, اس کی حقیقتوں کی ترتیب میں سب سے اوپر جو ہے وہ گاڈ ہے. کاسمولوجیکل آرڈر میں گاڈ از ایٹ دا ٹاپ, خدا سب سے اوپر, اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ پروفٹ کو رکھے, اس کے بعد وہ اینجلس کو رکھے, اس کے بعد اچھے انسانوں کو رکھے, پھر عام انسانوں کو رکھے, پھر جانوروں کو رکھے, پھر درختوں کو رکھے, پھر آگ کو رکھے, پھر پانی کو رکھے, پھر ہوا کو رکھے, پانی کو رکھے, پھر ارتھ کو رکھے. یہ اس کا کاسمولوجیکل آرڈر ہو گیا. لیکن کیا سب لوگوں کا کاسمولوجیکل آرڈر یہ ہوگا؟ ضروری نہیں. ایک دوسرا آدمی سے پوچھیں بھائی آپ مر جاؤ گے تو کیا ہوگا, وہ کہے کچھ نہیں ہوگا, مر جاؤں گے تو ختم, کچھ نہیں. جس طرح ایک گلاس ٹوٹ جاتا ہے, یہ کتاب پھٹ جائے, میں بھی ختم ہو گیا, ڈس انٹیگریٹ ہو گیا, کچھ نہیں. بولا نہیں, حساب کتاب سزن وہ کچھ نہیں ہوتا, وہ کچھ نہیں ہوتا. مین از جسٹ اے سائیکو کیمیکل آرگینزم, وٹ آئی ایم تھنکنگ, وٹ آئی ایم ڈوئنگ از جسٹ دی مینیفیسٹیشن آف دی الیکٹرو کیمیکل پروسیسز وچ آر ٹیکنگ پلیس ان مائی باڈی. آئی ایم ناٹ این اسپرچل بینگ اینڈ آئی ڈو ناٹ ریلائی آن اینی اسپرچل ایکسپلینیشن فار دی جسٹیفیکیشن آف مائی ایگزٹینس. واٹ از مائی ایگزٹینس؟ آئی ایم پیور سائیکو کیمیکل آرگینزم. تو اس کی حقیقتوں کی ترتیب میں خدا اوپر نہیں ہے. کاسمولوجی میں خدا اس کے سسٹم میں ہی نہیں, اس کی کاسمولوجیکل آرڈر کے اندر سب سے اوپر ہے ایکٹیو میٹر, مادہ جو کہ ایکٹیو میٹر ہے, ایکٹیو میٹر جو کہ پرپیچویٹ کر سکتا ہے اپنے جیسا میٹر, ریپروڈیوس کر سکتا ہے, جسے ہم لیونگ آرگینزم کہہ دیتے ہیں. صحیح ہے, ایکٹیو میٹر ہے. اور سب سے نیچے کیا ہے؟ ڈیڈ میٹر جو ریپروڈیوس نہیں. تو اس کی کاسمولوجیکل آرڈرنگ ڈفرینٹ ہے. اس آدمی سے جس کی کاسمولوجیکل آرڈر میں سب سے اوپر خدا ہے, اس آدمی سے بالکل مختلف ہوگی اس کی کاسمولوجیکل آرڈر جس کے ٹاپ کے اوپر ایکٹیو میٹر ہے. وہ ایکٹیو میٹر
یہی بنتا ہوگا جو لاجیکل پازیٹیوزم کی طرف,
لاجیکل پازیٹیوزم کی طرف جانے. اچھا میں یہ ایک بات یہ بتا دوں کہ لاجیکل پازیٹیوزم کے بارے میں عام طور پہ خیال ہے کہ نیسسریلی ایتھیسٹ ہوں گے. لاجیکل پازیٹیوزم یہ کہتے ہیں کہ وہ اسٹیٹمنٹ جو کہ ایکسپیرینس کی بنیاد پر ویریفائی نہیں ہوتی وہ میننگ لیس ہوتی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایگزسٹنس آف گاڈ کو ڈینائی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایگزسٹنس آف گاڈ کو اس لنگوسٹک پیراڈائم کے اندر میننگ فلی انڈرسٹینڈ نہیں کیا جا سکتا. تو اس کے نتیجے میں تھیزم سپورٹ ہوتا ہے. لیکن کیا سارے لاجیکل پازیٹیو ایتھیسٹ تھے؟
اس کا تو جواب اس طرح سے دیا جا سکتا ہے کہ آپ محمد فاتح کی کتاب ہوئیز رول دیکھیے یا اسی طریقے سے تقی الدین نبھانی کی کتاب آپ دیکھیے, مطلب وہ اسلام سسٹم آف اسلام, انہوں نے لاجیکل طریقے سے خدا کی ایگزسٹنس کو وہ کیا ہے. تو اگر وہ سامنے رکھتے ہیں تو کیا لاجیکل پازیٹیوزم خدا کے وجود کو تسلیم کر لیں گے؟ ہم نے تو حق کو یقین سے تسلیم کر لیا.
ٹھیک ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ لمٹ آف دا لینگویج از دا لمٹ آف دا ورلڈ. اس زبان کی جو حدود ہے وہ وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے جہاں پہ اس دنیا کی حدود ختم ہوتی ہے. اور دنیا کیا ہے؟ دنیا وچ از امپیریکلی ویریفائبل. لاجیکل پازیٹیوزم سے لوگ ڈسیو جو ہو جاتے ہیں وہ اسی لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف لاجک پہ چلتے ہیں. وہ کہتے ہیں اسٹیٹمنٹ شوڈ بی امپیریکلی ویریفائبل. جو اسٹیٹمنٹ ہے اگر ایکسپیرینس کی بنیاد پر صحیح یا غلط ثابت ہو سکتی ہے تو ہم اسے میننگ فل اسٹیٹمنٹ سمجھیں گے. اب یہ میں کہوں کہ خدا وجود رکھتا ہے, نہ میں ایکسپیرینس کی بنیاد پہ اسے پروف کر سکتا ہوں نہ ایکسپیرینس کی بنیاد پہ ڈسپروو کر سکتا ہوں, لہٰذا یہ میننگ لیس ہے. اس لیے وٹکنسٹائن کہتا تھا ایتھکس اس کے نظر میں صرف خدا کی ایگزسٹنس کو آپ علم کی بحث سے باہر نہیں نکالتے, پوری اخلاقیات کو ہی بحث سے نکال دیتے ہیں. آپ کہیں سچ بولنا اچھی بات ہے تو اچھائی کو کیا ایکسپیرینس کیا جا سکتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے ایتھکس ایسٹھیٹکس and mysticism lie on same foot because they are all equally nonsensical. Why they are nonsensical? Because all these statements are not empirically verifiable. تو بہرحال یہ لاجیکل پازیٹیوزم کی بات تو ایک الگ میں بتا رہا ہوں, لیکن یہ کہ عام طور پر اس جو دوسری پوزیشن ہے اس میں مارکسسٹ زیادہ بہتر پوزیشن پہ بیٹھتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ مارکسسٹ پوزیشن میں تو وہ کہتے ہیں میٹر کیا ہے؟ ایکٹیو. اور ایکٹیو میٹر جو ہے وہی ریالٹی ہے, اور جو سب سے ڈاؤن پر ہے وہ ہے پیسو میٹر یا ڈیڈ میٹر. تو مارکسسٹ جو پوزیشن ہے وہ ریلیٹیولی زیادہ کلوز ہے اس کاسمولوجیکل ایکسپلینیشن کے, جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہر تبدیلی کیوں آتی ہے؟ کیونکہ مادہ تبدیل ہو جاتا ہے, اور مادے کے اندر تبدیلی سیلف گورنڈ ہے. مادے کے اندر تبدیلی کسی ایکسٹرنل فیکٹر کے لیے نہیں بلکہ انٹرنلی میٹر کی بات ڈائمینشن رہتی ہیں جو کہ سیلف گورنڈ ہے, سیلف ڈیٹرمیننگ ہے. تو سیلف ڈیٹرمیننگ ہے اس لیے وہ کسی دوسری ہستی پہ انحصار نہیں کرتا اپنے وجود کی بقا کے لیے. تو میٹر ایکٹیو میٹر اس کے سسٹم میں اوپر ہے. ابھی ہمارے لیے جو اہم بات ہے وہ یہ کہ اس کاسمولوجیکل انالیسس کے بغیر یو کین ناٹ ایڈریس میٹا فزیکل کوشچن. یعنی کہ کاسمولوجی افیکٹ کرتی ہے آپ کی میٹا فزکس کو. اگر فرض کیا ہے کہ میرے کاسمولوجیکل آرڈر میں سب سے اوپر سورج ہے تو میرا رویہ چیزوں کے بارے میں ڈفرینٹ ہو. اگر میرے کاسمولوجیکل آرڈر میں سب سے اوپر آگ ہے تو میرا رویہ ڈفرینٹ ہوگا. اگر میرے کاسمولوجیکل آرڈر میں کئی خدا ہیں ٹاپ پر تو میرا رویہ ڈفرینٹ ہوگا. تو کاسمولوجیکل آرڈر جو ہے وہ سب سے بنیادی صورت اختیار کرتا ہے. اور آپ اگر اپنی شروع کی بحثیں دیکھیں تو اس میں کاسمولوجیکل اٹیک کرتے تھے, کاسمولوجیکل آرگومنٹ. یعنی کہ صحابی گئے کسی کے پاس, انہوں نے کہا کہ میرا خدا جو ہے وہ زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. تو جو بادشاہ تھا اس نے ایک آدمی کو قتل کر دیا, ایک کو چھوڑ دیا. اس نے کہا زندگی موت میں دیتا ہوں زندگی, ایک کو چھوڑ دیا ایک کو قتل کر دیا. تو انہوں نے کہا میرا خدا جو ہے سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے. آرگومنٹ بدل دیا, ہی کین ڈو اینی تھنگ. کاسمولوجیکل آرڈر ہے, کاسمولوجیکل آرڈر کو کچھ نہیں کر سکتا. وہ کہے گا نہیں نکلو سورج تو سورج نکل جائے گا.
اگر اسی کے حوالے سے تو یہ میرے خیال میں حضرت ابراہیم اس میں یاد ہے نا کہ بدری کے ان لایاتی میں شمس نے اس میں ایکچولی انہوں نے جو کلیم کیا تھا, مطلب میں ایسٹرونومی کے حوالے سے بتا رہا ہوں, انہوں نے کلیم کیا ہے تم مغرب سے نکال کے دکھا دو. اور ایک ندی کوئی ایسی چیز کلیم نہیں کر سکتا جو پاسبل نہیں ہے. اور میں ایسٹرونومیکل طور پر ہی بتاتا ہوں وداؤٹ ڈسٹربنگ دی آرڈر آف دی ریورس. اگر آپ اس طرح سے مطلب کہ اس کا کوئی یوز نہیں ہے لیکن آپ ایسے راکٹ آپ پاس کریں اس کے پول تبدیل ہو جائیں سورج مغرب سے نکلنے لگے تو اٹ از پاسبل. ٹیکنیکلی پاسبل ہے لیکن اس کا کوئی یوز نہیں ہے.
تو ایشو یہ کہ جب کاسمولوجیکل وہ پوزیشن لیتا ہے تو خاموش ہو جاتا ہے آدمی, کیونکہ وہ کاسمولوجیکل آرگیومنٹ جو ہوتا ہے وہ اس ہستی کے بس سے باہر ہے जो उस कॉस्मोलॉजिकल ऑर्डर में एक खास पोजीशन पे फिट हुआ है, जैसे मैं एक कॉस्मोलॉजिकल ऑर्डर का हिस्सा हूं और उस हिस्से में होते हुए मैं उस पूरे कॉस्मोलॉजिकल ऑर्डर को तब्दील नहीं कर सकता। जिस तरह से अगर कोई इंसान बजाते खुद उस कॉस्मोलॉजिकल ऑर्डर का हिस्सा है तो वो कैसे तय करेगा कॉस्मोलॉजिकल ऑर्डर, कॉस्मोलॉजिकल ऑर्डर पहले से मौजूद है। तो जितनी भी कॉस्मोलॉजीज होती हैं उनका दावा क्या होता है, दावा ये होता है कि ये मेरी बनाई हुई तरतीब नहीं है, मैंने नहीं बनाई, हकीकत ऐसी ही है और इसी तरतीब में जितने दुनिया में कॉस्मोलॉजिकल क्लेम होते हैं वो इसी बुनियाद से होते हैं कि हकीकत ये तरतीब मैंने वजह नहीं की, हकीकत की यही तरतीब है, हकीकत की यही तरतीब होने की वजह से मैं इस तरतीब को समझ सका हूं। ये तरतीब इस वजह से ऐसी नहीं है कि मैंने तरतीब दे दिया, तरतीब तो ऐसी ही थी, मैंने इसे देख लिया, जैसे ये किताबें पहले से लगी मैंने नहीं लगाई, इसी तरतीब में मैंने इन किताबों को समझा है और तरतीब मैंने नहीं दी बल्कि मैं इस तरतीब का हिस्सा हूं। हर कॉस्मोलॉजी इसी बुनियाद पर क्लेम करती थी ट्रेडिशनली, ट्रेडिशनली बाद में नहीं, कांट ऑनवर्ड तब्दील हो गई बात। कांट तक जितने बड़े थियरिस्ट आए वो यही कहते थे कि ये मैंने कॉस्मोलॉजिकल ऑर्डर को पहचान लिया है किसी खास तरीके से, वो दूसरा सवाल है उसका मैं जवाब दूंगा, लेकिन पहले मेटाफिजिकल पोजिशन। कॉस्मोलॉजिकल ऑर्डर जो है वो नंबर वन आपके मेटाफिजिकल सवाल का जवाब में मदद देता है, नंबर वन। नंबर टू, कॉस्मोलॉजिकल ऑर्डर के बारे में हर इंडिविजुअल ये दावा करता था कि भाई हकीकतों की इस तरतीब को जो भी तरतीब वो दे रहा है, चाहे वो खुदा से शुरू कर रहा है, चाहे वो मादे से शुरू कर रहा है, चाहे वो किसी नेचुरल ऑब्जेक्ट से शुरू कर रहा है, चाहे वो जंगल से शुरू, किसी चीज से भी वो शुरू कर रहा है, जिस चीज से भी वो शुरू कर रहा है, वो ये कहता है कि हकीकत की ये तरतीब मेरी वजह करदा नहीं है, हकीकत में यह तरतीब थी इस वजह से मैं इसे समझ सका। ठीक है, अब प्रॉब्लम यह है कि हकीकतों को तरतीब को पहचानने के लिए आपके पास इल्म होना चाहिए ना, हकीकत का, हकीकत का इल्म ही नहीं है तो मैं हकीकत को पहचानूंगा कैसे। जैसे एक आलिम जो होता है वो किस स्टूडेंट के अंदर इल्म है और किस में नहीं है पहचान लेता है, लेकिन एक जाहिल आदमी तो नहीं पहचान सकता है किस में इल्म है और किस में इल्म है, या हीरे ये सोना है या चांदी है या पीतल है, ये जौहरी जानता है ना, क्योंकि उसके पास इल्म होता है उसका, तो हर चीज को पहचानने के लिए खास इल्म होता है। तो कॉस्मोलॉजी पॉसिबल ही नहीं है, कॉस्मोलॉजिकल एनालिसिस पॉसिबल ही नहीं है अगर ऑन्टोलॉजिकल एनालिसिस। व्हाट इज ऑन्टोलॉजी? ऑन्टोलॉजी डील्स विद द एनालिसिस ऑफ बीइंग। ऑन्टोलॉजी आपको ये बताती है कि कौन सी चीज क्या है, कौन सी हकीकत नेचुरली किससे सुपीरियर है। जैसे फर्ज किया कि अगर आप उसको देखें एरिस्टोटल को, तो एरिस्टोटल कहता था कि देखें दुनिया में मोशन पॉसिबल कैसे, एरिस्टोटेलियन एक्सप्लेनेशन मोशन की ये थी कि वो ये कहता था कि देखें जो नेचुरल अट्रैक्शन होती है चीजों के लिए, हर चीज अपनी हकीकत की तरफ सफर करती है, तो आग आग की तरफ जाती है, पानी पानी की तरफ जाता है, फायर फायर की तरफ, वो एयर एयर की तरफ जाती है और अर्थ अर्थ की तरफ जाती है, लेकिन इन सब का अपनी एक कॉस्मोलॉजिकल तरतीब है। जैसे फायर आग को जब भी आग जलाएं उसकी डायरेक्शन अपवर्ड होती है, तो वो कहता था क्यों ऊपर की तरफ होती है, इसलिए कि आसमानी जो चीजें होती हैं, सेलेस्टिकल ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो फायर की बनी हुई है, एरिस्टोटल का ख्याल था। तो आग की डायरेक्शन ऊपर की तरफ क्यों, क्योंकि वो ऊपर से है। लेकिन जब आप एक पत्थर फेंकते हैं, पत्थर तो वो आग में से गुजर जाता है, इसका मतलब है कि वो ऊपर नहीं जा सकता, उसको ऊपर भी फेंकें तो वो नीचे जाता है, आग में से भी गुजर जाता है, हवा में से भी गुजर जाता है, पानी में से भी गुजर जाता है, और कहां जाके ठहरता है, पत्थर पर, पत्थर पत्थर पे ठहरता है। क्यों? क्योंकि उसका नेचुरल ऑर्डर क्या है, पानी से नीचे, हवा से नीचे, फायर से नीचे, तो सबसे नीचे वो कहता है अर्थ है, उसके ऊपर क्या है, पानी है, पानी के ऊपर एयर है, एयर के ऊपर फायर है। तो अगर आप हवा को पानी के नीचे ले जाएं और उसे छोड़ें तो वो बुलबुला बन के ऊपर आ जाए। उसका नेचुरल ऑर्डर क्या है? ऊपर है। तो ये मोशन का तस्वुर एरिस्टॉटल का था, लेकिन ये एक खास किस्म की ऑन्टोलॉजी कि उसके ख्याल के अंदर हकीकतों की ये चार मैनिफेस्टेशन तो हैं, लेकिन इन चार मैनिफेस्टेशन में सबसे ऊपर फायर है, उसके नीचे एयर है, उसके नीचे वाटर है, उसके नीचे अर्थ है। ये उसे कैसे पहचाना? जब उसने वाटर को पहचान लिया, जब उसने अर्थ को पहचान लिया, जब उसने फायर को पहचान लिया, जब उसने एयर को पहचान लिया। तो चीजों को तरतीब देने के लिए आपको उनकी हकीकतों के बारे में पता होना चाहिए, वरना आप ऑर्डर नहीं कर सकते। यानी कि क्यों खुदा सुपीरियर है आग से, आपके पास एक ऑन्टोलॉजी होनी चाहिए जिसकी बुनियाद पर आप साबित कर सकें या बता सकें या कन्विंस कर सकें कम से कम अपने आप को कि खुदा फायर से अफजल है या फरिश्ते जो है वो अफजल हैं या इंसान अफजल हैं फरिश्तों से या जो पैगंबर हैं वो अफजल हैं आम इंसानों से। तो आपके पास कोई ना कोई ऑन्टोलॉजी होनी चाहिए, कोई ना कोई ऑन्टोलॉजिकल एनालिसिस होना चाहिए जिसकी बुनियाद पर आप न सिर्फ हकीकतों को पहचान सकें, जब आप हकीकतों को पहचानेंगे तो तभी आप हकीकतों को ऑर्डर कर सकें। कैन नॉट पुट थिंग्स इन ऑर्डर विदाउट नोइंग दैट व्हाट एक्चुअली थिंग्स आर। इफ यू आर एबल टू नो व्हाट एक्चुअली थिंग्स आर देन यू विल बी एबल टू मेक पुट देम इन ऑर्डर। तो ऑर्डर जब तक के आप नहीं कर सकते, ऑर्डर नहीं कर सकते जब तक के आप उनको जानते ना, तो जानने के लिए आपके पास ऑन्टोलॉजी होनी चाहिए। और ऑन्टोलॉजी जब आप ऑन्टोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं, जब आप हकीकत को जान लेते हैं, तो फिर आप हकीकतों को तरतीब देते हैं उन हकीकतों के इदराक के नतीजे। तो जब एक आदमी ये कहता है कि ला इलाहा, तो वो ये कहता है, ये खास उनकी ऑन्टोलॉजी का दावा है कि नहीं कोई माबूद सिवाय खुदा, ये एक ऑन्टोलॉजिकल क्लेम है। और वो ऑन्टोलॉजिकल क्लेम की बुनियाद पर वो एक नई कॉस्मोलॉजी दे रहा है कि तुम किसी के आगे नहीं झुक सकते सिवाय खुदा के, यू नो व्हाट आई मीन। या जब क्रिश्चियन ट्रिनिटी की बात करता है तो एक ऑन्टोलॉजिकल क्लेम करता है, फादर सन एंड होली गोस्ट, ये खास उनका ऑन्टोलॉजिकल प्रजम्पशन है जिसकी बुनियाद पर वो एक नई कॉस्मोलॉजी देता है जो कि यूनिक है, जो कि जुडाइक कॉस्मोलॉजी है। तो आप कोई भी कॉस्मोलॉजी जब देखें वो प्रिज्यूम करती है कॉन्टोलॉजी को, और ये दोनों का चोली दामन का साथ है। अगर आप कहते हैं कि आप कॉन्टोलॉजी देंगे विदाउट कॉस्मोलॉजी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब आप हकीकतों को जान लेंगे तो हकीकतों को आप रेंडमली कभी नहीं जानते, हकीकतों को आप एक तरतीब में जानते, कौन किस में है, कौन किस जगह पर है, कौन किससे अफजल है, कौन किससे पहले है, कौन कॉजली प्रायर है, कौन कॉजली जो है प्रेफरेबल है दूसरे के मुकाबले, कौन कॉजली नेसेसरी है, कौन कॉजली सफिशिएंट है, यू नो व्हाट आई मीन। तो आप जितने भी एनालिसिस में जाएंगे मेटाफिजिकल एनालिसिस में, उसमें खास किस्म की कॉस्मोलॉजी और एक खास किस्म की ऑन्टोलॉजी की बुनियाद पर आप इस पहले सवाल का जवाब दे सकेंगे कि हकीकत क्या है। इसी तरह आप दुनिया में जितने लोग हकीकत के मामले में डिसएग्री करते हैं एक दूसरे से, उसका बुनियादी वजह ये होती है कि वो जिस चीज पर डिसएग्री करते हैं वो ऑन्टोलॉजी और कॉस्मोलॉजी है। हमने से कोई भी ये नहीं कहेगा कि ये ग्लास रियल नहीं है, ये ग्लास रियल है, लेकिन क्या ये इस हद तक रियल है कि मेरे वजूद के जवाब फराहम कर दे, या मेरा वजूद इसके बगैर भी एक्सप्लेनेबल है। तो अगर मैं अपने वजूद की एक्सप्लिकेशन के लिए इस ग्लास के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूं, तो गो के ये हकीकत होने के बावजूद, हकीकी होने के बावजूद हकीकतों की तरतीब में निचली सतह पे चला जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि प्रॉफिट, तो क्या मेरे वजूद की एक्सप्लिकेशन के अंदर उसका क्या रोल है, क्या उसके माइनस करके मैं अपने वजूद की जस्टिफिकेशन दे सकता हूँ? अगर मैं कहता हूँ कि मैं नहीं दे सकता, तो मेरे ख्याल में मेरे कॉस्मोलॉजिकल ऑर्डर में वो बहुत अहम पोजिशन कर दे। लेकिन एक दूसरा आदमी कहे कि मुझे क्या पता प्रॉफिट थे या नहीं थे, मैं तो नहीं मानता प्रॉफिट को। तो उसके वजूद की एक्सप्लीकेशन के अंदर प्रॉफिट कॉस्मोलॉजिकल ऑर्डर में नीचे सदन पे आ जाएगा। तो जो भी आप कॉस्मोलॉजिकल पोजिशन लेंगे वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेगा आपके मीनिंग ऑफ एग्जिस्टेंस को, और वो पॉसिबल नहीं है जब तक कि आप एक खासतौर का ऑन्टोलॉजिकल ऑर्डर प्रज्यूम ना करें। ये दोनों टर्म आप लोगों के जहन में क्लियर हो गई, ये मैंने बिल्कुल ऑनेस्टली जो फलसफे के अंदर बिल्कुल इस्टेब्लिश्ड इनकी डेफिनेशन और मीनिंग लिए जाते हैं वो मैंने आपको बता दी। और ये आपको बता दिया कि मुख्तलिफ फलसफियों के मुख्तलिफ कॉस्मोलॉजिकल पोजिशन देते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, ग्रीक जो थे वो करते ये थे कि वो हकीकत का एक कोहेरेंट तस्वीर ले लेते पूरा, और उसके अंदर इंसान को भी फिट कर देते। ये पोजीशन होती थी, यानी कि हकीकत का एक तस्वीर है उसमें इंसान भी कहीं फिट है। मिसाल के तौर पर थेल्स ये कहता है द होल रियलिटी इज वाटर, सब वाटर है। ये भी वाटर की एक किस्म है, ये घर भी एक वाटर की किस्म है, इंसान भी वाटर की एक किस्म है, पूरी रियलिटी वाटर ही की मैनिफेस्टेशन है और इंसान भी वाटर की एक शक्ल है, वो कहीं फिट हो। सही है? कोई कहता है द रियलिटी इज फायर, तो इंसान भी फायर की एक किस्म है, ये भी फायर की एक किस्म है, आसमान भी फायर की एक किस्म है, और उस हकीकत ने इंसान को भी फिट कर दिया। कोई कहता है द होल रियलिटी इज एटम, एटॉमिक, डेमोक्रेट। ये मैं सब प्री सॉक्रेटिक फिलोसोफर बता रहा हूँ आपको, डेमोक्रेटस और लूसीफर, यानी कि मार्क्स ने जिस आदमी पर पीएचडी किया, डेमोक्रेटस और लूसीफर दोनों एटॉमिक्स थे, तो मार्क्स के ऊपर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था एटॉमिक्स का, तो वो जाहिर है कि आगे चलकर मटीरियलिस्ट बना। दोनों एटॉमिक्स थे, वो कहते थे जौहर मैटर है, फंडामेंटल यूनिट क्या है मैटर, तो ये भी मैटर की सिस्टम है, ये भी मैटर की सिस्टम है, इंसान भी मैटर की सिस्टम है, आसमान भी मैटर, हर चीज मैटर, उस पूरी रियलिटी इंसान को भी फिट कर दिया उसने। तो एक पूरी कॉस्मोलॉजी देता था, उस कॉस्मोलॉजिकल ऑर्डर में इंसान को भी कहीं फिट कर दिया, एक पूरी ऑन्टोलॉजी देता उसने इंसान को भी कहीं फिट कर देता, ये वो करते रहे। बात तो ऐसे थे जो कहते थे द होल रियलिटी इज फ्लक्स, हरकत है, और इंसान को भी उसी सिस्टम के अंदर कहीं फिट कर देते। कोई कहते थे ऑल इज रेस्ट, हकीकत को एक्सप्लेन कर, इंसान को भी उसमें कहीं फिट कर देते। तो इंसान जो था वो कायनात के एक कॉस्मोलॉजिकल ऑर्डर में फिट इन एक यूनिट था, ये ग्रीक थॉट कहते हैं। इसी वजह से वो होलिस्टिक फिलोसफी देते थे, सिस्टम बिल्डर थे, इसलिए उसमें जो पैदा हुए जो सिस्टम बिल्डर वो इतने जाइंट्स थे, इतने बड़े सिस्टम बिल्डर्स उन्होंने पैदा किए कि आज तक दुनिया में एरिस्टोटेलियन सोसाइटी मौजूद है, प्लेटोनिक सोसाइटी मौजूद है। प्लेटो के बारे में व्हाइटहेड कहता है द होल वेस्टर्न फिलोसफी इज जस्ट लाइक अ फुट नोट ऑफ प्लेटोज वर्क। प्लेटो का फलसफा एक तरफ लिख दें और पूरी वेस्टर्न फिलोसफी का फलसफा एक तरफ रख दें, तो प्लेटो का फलसफा एक किताब की शक्ल में होगा और पूरी वेस्टर्न फिलोसफी एक फुटनोट होगी, जिस तरह ये फुटनोट होता है, इतना डिफरेंस। ये कौन कह रहा है? व्हाइट हेड, जो कि बड़ा जबरदस्त साइनोटिक फिलोसफर था 20वीं सदी का, वो ये कहता है कि ये फर्क है प्लेटो की थॉट। तो वो इतने बड़े सिस्टम बिल्डर पैदा हो, ये दोनों टर्म्स आपके जहन में क्लियर हो गए या नहीं, इस पर बात कर लेते हैं, फिर यहीं पर ठीक है। ऑन्टोलॉजी, ओ एन टी ओ एल ओ जी वाई, ऑन्टोलॉजी और कॉस्मोलॉजी, मुख्तलिफ ये दूसरे। मैंने आप थोड़ा लेट आई, मैंने तीन सवाल लिखवाए हैं। पहला सवाल लिखवाया हकीकत क्या है, व्हाट इज रियलिटी। दूसरा सवाल लिखा है कि हकीकत को मैं जान कैसे सकता हूँ, ये दूसरी सतह का सवाल है। जैसे आप कह रही है ना ट्रेडिशन से, तो कुछ लोग कहते हैं हाँ ट्रेडिशन के जरिए पता चलेगा, कुछ लोग कहते हैं असल के जरिए पता चलेगा, कुछ कहते हैं हवासों के जरिए पता चलेगा, कुछ कहते हैं विज्ञान के जरिए पता चलेगा, कुछ कहते हैं कोई दूसरा आगे मुझे बता देगा, यू नो मुख्तलिफ पोजिशन लेंगे। लेकिन आज मैं सिर्फ मेटाफिजिक्स के ऊपर, मेटाफिजिक्स एज ए टर्म, मेटाफिजिकल फिलोसफी नहीं पढ़ा रहा, पूरी वेस्टर्न फिलोसफी बड़ी है मेटाफिजिक्स, तो बहुत बड़े बड़े मेटाफिजिशियन बैठे हुए, यानी कि प्री सॉक्रेटिक फिलोसफी में हेराक्लाइटस है मेटाफिजिशियन, Parmenides a metaphysician. Empedocles a metaphysician. Hales, metaphysician. Anaxagoras, Anaximander. Pythagoras. Pythagoras kehta hai, the reality is number.
Okay, what would be the difference between metaphysician and metaphysicist?
मेरे ख्याल में मैं हो सकता है मेरा ठीक ना हो, लेकिन ये कि हम metaphysician उन लोगों को कहते हैं जो एक खास सिस्टम की मेटाफिजिक्स की बुनियाद पर कोई सिस्टम डेवलप करता है, और जाहिर है कि मेटाफिजिक्स उसकी जो भी अंडरस्टैंडिंग है,
क्योंकि आम जवान में इस वक्त तो फिजिसिस्ट वो है जो फिजिक्स जानता हाँ। हो, फिजिशियन वो है जो सिर्फ के शोबे से ताल्लुक रखता हो, तो ये जरा थोड़ा हाँ। सा मैं कंफ्यूज
हूँ। बुनियादी तौर पर ये जो टर्म है मेटाफिजिक्स की, एरिस्टोटल के हवाले से डेवलप हुई। एरिस्टोटल ने नेचर के ऊपर बहुत कुछ लिखा, तो उसके शागिर्दों ने उस पूरे वर्क को फिजिक्स कह दिया, लेकिन उसने स्प्रिट के ऊपर भी लिखा था, गॉड के ऊपर भी लिखा था, रिलीजन पे भी लिखा था, उसने एथिक्स पे लिखा था, उसने लेवल्स ऑफ स्प्रिट के ऊपर लिखा था, बहुत कुछ ऐसा इसने लिखा था जो कि नेचुरल डोमेन में एक्सप्लेनेबल नहीं था, तो उन्होंने उसका नाम मेटाफिजिक्स रख दिया, बियॉन्ड फिजिक्स। तो बाद में मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि माबातु तबियात मटीरियलिस्टों की भी एक माबातु तबियात होती है, यानी कि उसके जो सिस्टम उसका जो कॉस्मोलॉजिकल सिस्टम है उसमें सबसे ऊपर मादा है, तो मादा फौकियत रखता है दूसरी तमाम हकीकतों को। इसका डिफेंस देने के लिए आपको एक कॉस्मोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी, आपको एक ऑन्टोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी। तो हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि मेटाफिजिक्स का मतलब होता है गैर मादी चीजों का इदराक। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मादी अशिया की भी मेटाफिजिक्स होती है। देयर इज ए मेटाफिजिक्स ऑफ मटीरियलिज्म पॉसिबल। जैसे मैंने मार्क्स की एग्जाम्पल दी, मार्क्स पहले खास तौर की मेटाफिजिक्स प्रिज्यूम करता है। जैसे उसका जो काम है, अगर आप उसका पीएचडी थीसिस पढ़े तो वो दो लोगों के ऊपर है, दोनों प्री सॉक्रेटिक डेमोक्रेटस लूकिपस, दोनों एटॉमिस्ट हैं, एटम को अल्टीमेट स्टॉप ऑफ रियलिटी मानते हैं, और दूसरे एपिक्यूरियन। तो एपिक्यूरियन प्लेजर को फाइव सेंसेस के थ्रू एक्सेसिबल समझता है, और डेमोक्रेटस लूकिपस मैटर को अल्टीमेट स्टॉप ऑफ रियलिटी मानते हैं। तो जाहिर है कि पहले वो इस बात पे कन्वेंस हो गया कि अल्टीमेट स्टॉप रियलिटी का मादा है, मैटर बुनियादी तौर पर हकीकत का बुनियादी वस्त क्या है वो मादी है। जब उसने ये तस्लीम कर लिया उसके बुनियाद पर उसने पूरा मार्क्सिज्म डेवलप कर लिया। तो इशू ये है, या सोशलिज्म डेवलप किया, और अपने सोशलिज्म को कहता था साइंटिफिक सोशलिज्म। ये जो मेरा दावा है महज फलसफा नहीं है, बल्कि मैं साइंटिफिकली, यानी कि आप उसका कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ें तो उसके अंदर अगर आप उसको डीपली पढ़ें तो तीन तरह के तस्वुरे रियासत उसमें मिल जाएंगे। तो लोगों ने उससे कहा कि भाई तीन तरह के तस्वुरे रियासत हैं इसमें, तो उसने कहा कि भाई पहले मुझे वो ठीक लगा, फिर मुझे वो ठीक लगा, फिर मुझे वो ठीक लगा। और साइंटिस्ट यही करता है, जब उसको कोई चीज ठीक लगती है, कन्वेंस हो जाता है, तो उसको छोड़ देता है, मुझे ये ठीक नहीं लगा। जाहिर है कि शुरू में उस पर बड़ा इन्फ्लुएंस था यूटोपियन अनार्किस्ट है बाकूनी और ग्रोधा, ये दोनों ये फ्रेंच यूटोपियन अनार्किस्ट थे। तो जाहिर है कि उस वक्त ये यंग था, उसने पड़ा बड़ा मुतासर हो गया, लेकिन बाद में उसने उसकी क्रिटिक डिवेलप कर ली तो उसे छोड़ दिया। जिस तरह साइंटिस्ट होता है, एक चीज तजर्बा करता है, तजर्बा नाकाम हो गया उसने वो छोड़ दिया, पोजिशन हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर दिया, दूसरा हाइपोथेसिस लिया, तीसरा लिया, वो कहता है साइंटिफिक सोशलिज्म। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि पहला जो सवाल है माबातु तबियाती सवाल है। रैशनलिज्म जो है आपको ये दावा करता है कि हकीकत जो भी है उसको समझने के लिए अकल जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, अकल जरूरी नहीं है, हवास जरूरी है, वो इनको हम इंटेरिसिस कहते हैं, वो मैं आप लोगों को अलग अलग बता रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर आपको अभी ये समझ में आ गया है कि मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट ऑन्टोलॉजिकल और कॉस्मोलॉजिकल बुनियाद पर आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और जब भी कोई इंसान कोई पोजिशन लेता है जिंदगी के बारे में, कोई मीनिंगफुल क्लेम करता है, तो वो डायरेक्टली अफेक्ट होता है उसकी कॉस्मोलॉजी से, और डायरेक्टली अफेक्ट होता है उसकी ऑन्टोलॉजी। अगर वो ये कहता है कि मैं नहीं मानता किसी कॉस्मोलॉजी और ऑन्टोलॉजी को, तो ये भी एक कॉस्मोलॉजिकल और ऑन्टोलॉजिकल क्लेम है। بنیادی طور پر، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، یہ بھی ایک پوزیشن ہے کہ یو آر ناٹ ٹیکنگ اینی پوزیشن پریسائسلی ان دی سینس دیٹ واٹ از اپیرنٹ ٹو یو آر ڈینائنگ دیٹ. تو کم از کم تم اس چیز کو تو حقیقت مانتے ہو کہ یہ حقیقت جو تمہارے سامنے وہ حقیقی نہیں ہے. ہاؤ کڈ یو سے دیٹ without having a conception of reality, you cannot deny what is apparent to you. تو یہ جو دنیا ہے اس کے اندر جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے نا، جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی جو کل ایک حقوق نسواں کا یا پتہ نہیں کیا وومینس ڈے کا، تو اس میں مختلف لوگوں نے مختلف باتیں کر رہے تھے. اس میں ایک خاتون آئی ٹی وی میں، انہوں نے کہا کہ پوری کی پوری جو ریلیجن، پہلے وہ کہتی تھی جب میں چھوٹا تھا تو پہلے وہ یہ کہتی تھی پانچ پانچ سال پہلے کہ ساری تفاصیل ٹھیک نہیں ہے. اس دفعہ انہوں نے حیرت انگیز بات کی، چودہ دفعہ میں پہلے وہ کہتی ساری تفاصیل غلط ہے کیونکہ سب تفاصیل مردوں نے کی، ساری تفاصیل مردوں نے کی اس لیے وہ بائز ہے اور عورتوں کے خلاف. کل انہوں نے ایک ابھی الگ بات، اب وہ ظاہر ہے اسلام کو دین کے انہوں نے ختم کر دیا، اسے چھوڑ دیا اور آگے بڑھ گئے. انہوں نے کہا پوری سولاشن جو ہے شوونسٹک ہے، پوری ہیومن سولاشن. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سارے بڑے فلسفی مرد ہیں، تمام بڑے شاعر مرد ہیں، تمام بڑے آرٹسٹ مرد ہیں، تمام بڑے جورسٹ مرد ہیں، تمام بڑے پولیٹیکل تھیئرسٹ مر گئے. لہذا پوری ہیومن سویلائزیشن پریجڈسڈ ہے، بائزڈ ہے. اسپیسیفک ٹو واٹ؟ اسپیسیفک ٹو میل ڈومینیشن. وہ اس نے ٹی وی پہ کہہ دیا. تو پھر کیا کریں؟ سب کے ہاتھ پیر بھول گئے. اب ہم لوگ نیا دیکھنا ہے، وومن پوئٹ، وومن مفسر، سب وومن ہو. اب ایشو کیا ہے اس میں؟ ایشو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر آپ پلیٹو پہ یہ چارج لگائیں کہ وہ شوونسٹ ہے، ٹھیک بات نہیں، اس لیے کہ اس نے پورے اپنے لٹریچر میں کہیں میل اور فیمیل کی بات نہیں کی، اس نے انسان کی بات کی. اور ٹھیک ہے کہ آپ کہیں یہ ایک اعتراض، ٹھیک ہے، ظاہر ہے مجھے لگتا ہے شک ہے کہ اس نے جو کتاب پڑھی ہے وہ نینسی ٹوانا کی ایک کتاب ہے، دا وومن اینڈ دا ہسٹری آف فلاسفی. یہ امریکن رائٹر ہے، بڑی زبردست فلسفی ہے. اور وہ ہے فیمینسٹ، تو وہ یہ اس نے تمام ایرسٹاٹل کا کوئی جملہ عورت کے بارے میں، پلیٹو کا کوئی جملہ عورت کے بارے میں اس نے تلاش کر کے اس میں لکھ دیا. اس میں ایرسٹاٹل کا ایک بڑا مشہور جملہ ہے، جو ایرسٹاٹل نے کہا کہ جب انسان اگر ریشنل لائف نہیں گزارتا تو وہ مر جائے گا، اور مرنے کے بعد اگر ایک انسان ریشنل لائف گزارے گا تو مر جائے گا، اور مرنے کے بعد وہ ایک ستارے پہ چلا جائے گا اور ہمیشہ اس ستارے میں رہے گا. تو جتنے ستارے ہیں اتنے انسان ہیں، اور جب بھی انسان پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک ستارہ پیدا ہوتا ہے. جو ریشنل لائف گزارتا ہے امورٹل ہو کر وہاں پہ رہے گا، لیکن جو ریشنل لائف نہیں گزارے گا، ایرسٹاٹل کہتا ہے اکارڈنگ ٹو نینسی ٹوانا، کہ مرنے کے بعد وہ اس ستارے پہ نہیں جائے گا بلکہ عورت کی صورت میں دوبارہ پیدا ہو جائے گا. تو عورت کی صورت میں ہونا ایک سزا ہے اکارڈنگ ٹو نینسی ٹوانا، تو وہ اس میں پڑھ لی ہوگی. اب امپورٹنٹ بات کیا ہے؟ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر وہ عورت اور مرد کے تناظر میں دیکھ رہی ہے،
میری بھی تو شوگر رہے گی،
اس میں خاص قسم کی کاسمالوجی دے رہا ہے نا، وہ ایک خاص قسم کی کاسمالوجی. اس کاسمالوجی کے اندر اگر مرد عورت سے نیچے نہیں ہے تو اوپر بھی نہیں، اگر اوپر نہیں ہے تو نیچے بھی نہیں، برابر. لیکن وہ یہ کہتی ہے کہ مردوں نے جو کاسمولوجیکل آرڈر طے کیا اس میں عورت کو نیچے کر دیا اور مرد کو اوپر کر دیا. اس کے لیے اس کے پاس بہت سارے آرگیومنٹ ہوں گے، لیکن جس طرح سے وہ چیزوں کو دیکھ رہی ہے اور کائنات کو سمجھ رہی ہے اور وہ اعتراضات اٹھا رہی ہے، وہ ٹی وی پہ اس نے یہ بھی بولا، پی ٹی وی سے بولا کہ یہ خدا کو ہی کیوں کہتے ہیں، ہی کیوں کہتے ہیں، ہی او لارڈ کیوں کہتے ہیں، او لیڈی کیوں نہیں کہتے. تو یہ وہ باتیں وہ کر رہی تھی. تو ایشو یہ ہے کہ کاسمولوجیکل انالیسس اس کی پوری زندگی جو میننگ پاتی ہے اس کاسمولوجیکل اور اس آنٹولوجیکل آرڈر کے اندر طے پاتی ہے جس میں وہ اپنے آپ کو پاتی ہے. یو نو واٹ آئی مین؟ تو ये कहना कि वो ये कह सकती है विदाउट ए कॉस्मोलॉजी और विदाउट ए ऑन्टोलॉजी पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं। इसका मतलब ये है कि कोई दुनिया का इंसान, तहजीब तो बहुत बात की बात है, अपनी जिंदगी को मीनिंगफुल बना ही नहीं सकता विदाउट ए कॉस्मोलॉजिकल एंड ऑन्टोलॉजिकल पोजिशन। और डिलेमा ये है कि अपनी पूरी जिंदगी में अपनी कॉस्मोलॉजी और ऑन्टोलॉजी को क्वेश्चन नहीं कर रहा, दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज द प्रॉब्लम, कि वो चूंकि उसको क्वेश्चन ही नहीं करता, उसके तनाजुर में वो देख रहा है पूरी हकीकतों को और उसे क्वेश्चन करने पर तैयार नहीं। तो दी कॉस्मोलॉजिकल एंड ऑन्टोलॉजिकल presumptions are in fact the two irremovable spectacles through which you are looking at reality without questioning the neutrality of those irremovable spectacles. तो वो क्या है, ऐसे चश्मे हैं जिनसे आप हकीकत को देख रहे हो, लेकिन आप उस चश्मे को उतारने पे तैयार नहीं हो, उतार नहीं सकते, तो कम से कम उसके चश्मे होने को भी मान लो, वो भी नहीं। तो cosmological और ontological discourse फंडामेंटली एसोसिएटेड है ह्यूमन के साथ, और वो ह्यूमन जो सोसाइटी में रह रहा है उस सोसाइटी के साथ, और वो सोसाइटी जिस रियासत में रह रही है उस रियासत के साथ, और वो रियासत जिस तहजीब में रह रही है उस तहजीब के साथ। जाहिर है कि मुझे ये किसने बता दिया कि खुदा एक है, मेरे माशरे ने बताया ना, मेरे माशरे का एक रोल है, मेरी हकीकतों की तरतीब को जांचने और पहचानने में मेरे माशरे और मेरी रिवायात और मेरे तरबियत का एक रोल है, और उस रियासत का भी एक रोल है, उस तहजीब का एक रोल है, उस लैंग्वेज का एक रोल है। तो ये कहना कि आप बगैर किसी कॉस्मोलॉजिकल और बगैर किसी ऑन्टोलॉजिकल एनालिसिस के किसी तहजीब को समझ सकते हैं, या भूल जाएं इस बात को कि वो क्या कॉस्मोलॉजिकल और क्या ऑन्टोलॉजिकल प्रिजम्पशन रखता है, तहजीब के साथ हम आहंग हो जाए, पॉसिबल नहीं। तो जब एक तहजीब गालिब आती है तो अपनी ऑन्टोलॉजी और कॉस्मोलॉजी की बुनियाद पर गालिब आती है, कि लोग उस तहजीब को पहचानते हैं उस वक्त जब वो एक्सेप्ट कर लेते हैं उस ऑन्टोलॉजिकल और उस कॉस्मोलॉजिकल ऑर्डर को जो कि उस तहजीब से निकल कर आ रहा है। तो तहजीबी गलबा दरअसल उस मेटाफिजिक्स का गलबा होता है जिस मेटाफिजिक्स की बुनियाद पर वो तहजीब खड़ी हो रही है। जैसे क्वांटेस्टाइन जो है, वो क्वांटेस्टाइन कह रहा है कि भाई रोमन जो हीरोज हैं उनकी वर्शिप जो है वो मकसद हयात है। वो प्रीस्ट है, उसने कहा बेटा मर जाओगे तो फिर क्या होगा, हीरो क्या करेगा, घबरा गया, बेटा मर भी तो जाओगे फिर तुम्हें तुम्हारा क्या होगा, रोज तुम मरते हुए लोगों को बुला फिर क्या करूं। उसने कहा मर जाओगे तो खुदा बैठा हुआ है वो छोड़ेगा नहीं। फिर मैं क्या करूँ, इस कॉस्मोलॉजी को छोड़ो, इस कॉस्मोलॉजी को कबूल करो कि देर इज अ गॉड और ये है बाइबल, कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट होकर दूसरी कॉस्मोलॉजी को कबूल करो। तो हीरो वीरो कुछ नहीं होता, मैं गॉड होता है, बाइबल के सामने रखकर छोड़ दिया, रोम छोड़ के इधर आ गया, बाइजेंटाइन आ गया, इलाका छोड़ दिया, पूरी सल्तनत को लेकर इधर आ गया। You know what I mean? तो कॉस्मोलॉजिकल ऑर्डर अगर आप तब्दील करते हैं तो आप तब्दील हो जाते हैं। जब आप किसी कॉस्मोलॉजी को छोड़ देते हैं तो आप अपने वजूद के पूरे हिस्से को काट रहे हैं, आप अपने अनकॉन्शियसनेस को अंडू कर रहे हैं, आप अपनी रिवायात को अंडू कर रहे हैं। कन्वर्ट जब होता है आदमी तो वो बदल जाता है, कुछ और हो जाता है, वो उसने एक नई तहजीब एक नई तरतीब। और बाद ऐसे होते हैं, इतने जहीन और फतीन लोग होते हैं कि उन्हें पता होता है कि इस बात को मानने के नतीजे में मुझे ये हकीकतों की तरतीब छोड़ देनी पड़ेगी, और वो छोड़ने पर तैयार नहीं होते, इसलिए वो नहीं कबूल करते। अबू जहल से लोगों ने कहा कि भाई तुम्हारे पास तो इतना इल्म है, तुम क्यों कबूल नहीं करते जब तुम कहते भी हो कि वो ठीक कहता है। तो कहता है मैं ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है, मैं अपने बराबर में अपने गुलाम को बिठा लूं, ये मेरे बस से बाहर है, मैं नहीं कर सकता, मैं ये नहीं करूंगा, गो के मैं समझता हूं कि वो ठीक है लेकिन मैं ये करूंगा नहीं। यानी कि वो तो इस मायने में बहुत बेहतर था कि उसने कहा कि भाई ये हक है और अगर मैंने इसको पहचान लिया और इसको मैंने मान लिया फिर मैं उसके मुताबिक जिंदगी गुजारूंगा, रैशनल बात यही है। लेकिन मैं मानने पर तैयार नहीं हूं, मैं हूं बदमाश, मैं हूं मुतकब्बिर, मैं नहीं मानूंगा, इंसिस्ट किया उसने। ये मान लेने के बावजूद कि मैं इस कॉस्मोलॉजिकल ऑर्डर को मानने पर तैयार नहीं हूं, क्यों? अगर मैंने ये बात मान ली तो मुझे उस कॉस्मोलॉजी को मानना पड़ेगा जो मैं नहीं मानना चाहता। जब अब्दुल रहमान बिन औफ गर्दन काटने के लिए आया ना बाजार में, तो उसने कहा नीचे से गर्दन काट, ताकि जब गर्दनें रखी हुई सबसे ऊंची गर्दन अबू जहल की, ये हाइट थी उसकी एरोगेंस।
जो
जी बिल्कुल बिल्कुल, इनका ताल्लुक होता है। और इनमें सबसे अहम चीज यही होती है कि आपके पास हकीकतों की तरतीब का मेयार क्या है। अगर आपका और मेरा हकीकतों की तरतीब का मेयार एक जैसा होगा तो बहुत आसान हो जाएगा मेरा आपकी बात समझना या आपका मेरी बात समझना, और आपका मेरा इश्तराक अमल के इम्कान पैदा हो जाएंगे। लेकिन अगर मेरी और आपकी हकीकतों की तरतीब का मेयार डिफरेंट है तो बहुत मुश्किल है कि मैं आपके साथ कोई लॉन्ग टर्म बुनियादों पर इल्हाक करूं, क्योंकि जिंदगी के मायने मेरे लिए कुछ और हैं और आपके लिए कुछ और, बहुत ज्यादा दिन तक वो चल नहीं पाता। तो जो जिसे हम कहते हैं ग्राफ्टिंग, यानी कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन का इस वक्त एक हर्मेन्यूटिक्स हमारे रहीम भाई उसकी बड़ी बात करते हैं, ग्राफ्टिंग करें आप। ग्राफ्टिंग क्या करें कि आप अपनी तहजीब के जो अच्छी चीजें हैं वो दूसरी तहजीब में तलाश कर लें और उसके साथ उसको जोड़ लें, उसे कहते हैं ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग कर लें। लेकिन ये जो ग्राफ्टिंग होती है वो एडहॉकिज्म है, ज्यादा देर तक वो चलती नहीं। जाहिर है वो ग्राफ्टिंग का आप किसी तस्वुर खैर या तस्वुर हकीकत के इजहार के लिए करेंगे या किस बुनियाद पर करेंगे, तो बुनियादी तौर पर उसकी हैसियत इंस्ट्रूमेंटल होकर रह जाती है, ज्यादा देर तक चलता नहीं।
सर ज्योग्राफी के अंदर एक कंसेप्ट है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म।
जी,
एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म को बहुत, यानी कि ज्योग्राफिकल धड़ों में और फिलोसफिकल धड़ों में बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। वो भी यही कहता है कि जो है इंसान के ऊपर उसकी ज्योग्राफिकल एनवायरमेंट का बहुत तेज और बहुत, यानी कि प्रोपोर्शनल असर होता है। तो इसका कोई कॉन्टेक्ट है पिछले,
मतलब ये कि मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है। इब्न सीना का भी यही ख्याल था कि जियोग्राफिकल पर्टिकुलरिटी जो है वो ह्यूमन माइंड के ऊपर असरअंदाज होती है, और
ये कहना चाहते हैं कि जो सेंट्रल एशियंस हैं वो बॉलीवुड हैं और ऐसे हैं, और जो इंडियंस हैं वो बहुत ज्यादा सुस्त हैं और यूं हैं और वो हैं, इस तरह से इस जगह कहते हैं।
जी, बहुत सारे लोग ये कहते हैं, लेकिन कम अज कम जो बड़े थिंकर हैं, देखिये मसला ये रहा है कि इस वक्त जो मौजूदा दौर है उसमें कोई बड़ा फलसफा पैदा नहीं हुआ, इसमें ज्यादा बड़ी सोशियोलॉजी पैदा हुई, सोशियोलॉजी ज्यादा पावरफुल है। तो वो जियोग्राफी से ज्यादा डेलिकेट डोमेन है, वो कहते हैं सोशल स्ट्रक्चर डिक्टेट करता है आपके थॉट प्रोसेस को। लेकिन जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना, फिर मैं आपको बताऊंगा कि सोशियोलॉजी की अपनी लिमिटेशन है, कि यानी कि आप बड़े सोशियोलॉजिस्ट को ले लें, डरखाइन को ले लें, कार्सन को ले लें, या कॉम्पे को ले लें, स्पेंसर को ले लें, इनकी अपनी मेटाफिजिक्स थी। स्पेंसर मानता था एक खास उनकी मेटाफिजिक्स को, स्पेंसर कहता था कि जिस तरह ऑर्गेनिज्म होता है ना उसी तरह सोसाइटी भी एक ऑर्गेनिज्म है, और जिस तरह ऑर्गेनिज्म के अंदर इर्तका होता है उस तरह सोसाइटी में भी इर्तका होता है। तो वो थियरी ऑफ एवोल्यूशन, थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का मॉडल को मेटाफिजिकली एक्सेप्ट करता था और उसको उसने अप्लाई कर दिया सोसाइटी के ऊपर, उसकी बुनियाद पर उसने सोसाइटी को समझा। तो मैं जो बात बता रहा हूँ वो ये कि जो जियोग्राफिकल थियरी वो जब ये कहते हैं कि जियोग्राफी डिटरमिन करती है ह्यूमन माइंड को, दरअसल जियोग्राफी तो बुनियादी तौर पर फिजिकल नेचुरल लिमिटेशन है ना, इसका मतलब है कि अल्टीमेट स्टॉप ऑफ रियलिटी इज मैटर, मैटर इज डिटरमाइंड ह्यूमन कॉन्शियसनेस। तो उसकी कॉस्मोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर मैटर है सबसे ऊपर और वो डिक्टेट कर रहा है ह्यूमन माइंड को, और ह्यूमन माइंड की भी किस चीज को, ब्रेन को, बॉडी को, ब्रेन है ना, यानी कि जियोग्राफिकली जब आप इंटरैक्ट करते हैं तो ब्रेन इंटरैक्ट करता है ना बुनियादी तौर पर, इट्स अ पार्ट ऑफ द बॉडी। तो इशू ये है कि आप उसकी भी यानी कि एक ज्योग्राफर जब कोई क्लेम करता है तो उसको उसके एनालिसिस को भी आप मेटाफिजिक्स से अलग करके नहीं दे सकते, मेटाफिजिकल अंदर फ्रेमवर्क के अंदर ही आप रखकर उसे समझ सकते हैं।
इसमें मतलब कि जो यानी तो सब तो साधे हो गई लेकिन जाहिर है ये सलाहें जो है बड़ी अहम है, तो इसमें ये मतलब किया गया मेटाफिजिक्स है मतलब तो ये हम जो है मतलब कायनात से बाहर जो है जो दुनिया है जो हमारे हवास और महसूसात से आवरा है तो हम उसके लिए भी जो इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं तो वो हम इससे तबई दुनिया की इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं। तो क्या मतलब मजहबी पैराडाइम के अंदर यानी मजहबी इनहाज के अंदर मेटाफिजिक्स मतलब एक्सेप्टेबल है?
देखें बुनियादी तौर पर मजहब जो है चीजों को एड्रेस जिस नौयत से करता है, दरअसल मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि इसके जो ताल्लुक हैं दूसरी चीजों के साथ वो अभी मैं क्लियर ना करूँ। उसकी वजह क्या है कि पहले इन तीन ब्रांचेस को हम समझ लें, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी दूसरे सवाल से डील करती है और तीसरा एथिक्स। पहले इन टर्म्स को अगर हम अच्छी तरह समझ लें फिर हम उसकी इम्प्लीकेशन के ऊपर जाएं। लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ इतनी बात कि मजहब जो है उसकी अपनी मेटाफिजिक्स होती है, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि मेटाफिजिक्स को एक्सेस आप कैसे करेंगे ये दूसरी सतह का सवाल है, थियोरी ऑफ नॉलेज का सवाल है कि ठीक है मैंने मान लिया खुदा एक हकीकत है, अब मैं खुदा को जानूंगा कैसे? तो रैशनलिस्ट कहेगा खुदा को तुम जानोगे अकल के जरिए, इम्पेरिसिस्ट कहेगा खुदा को तुम जानोगे हवासों के जरिए, रिलीजियस ये कहेगा खुदा को तुम जानोगे वही के जरिए। यू नो व्हाट आई मीन? तो मेटाफिजिक स्पेसिफिक नहीं है रिलीजन के साथ, जो बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं वो मादा परस्ती के साथ भी उतनी ही जुड़ी हुई है जितनी के मजहब के साथ जुड़ी हुई है, और कोई भी मजहबी बहस मेटाफिजिक्स के बगैर पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ मजहब की बात नहीं है, दुनिया में कोई भी बहस मेटाफिजिक्स से ट्रांसेंड नहीं कर सकती। और लॉजिकल पॉजिटिविज्म ऑनवर्ड यानी कि 19वीं सदी के बाद लोग ये समझते थे कि अब मेटाफिजिक्स की बहस खत्म हो गई फलसफे, लेकिन 20वीं सदी के अंदर जो बड़े फलसफे पैदा हुए सब मेटाफिजिशियन, हाइडेगर मेटाफिजिशियन है, डिल्यूज जो मर गया मेटाफिजिशियन था, वही कहते हैं मेटाफिजिक्स के सवाल को इन्होंने फरामोश किया जिसकी वजह से ये गलती हुई। ऑन्टोलॉजी प्रिसीड्स एपिस्टेमोलॉजी, ये जब मैं मेटाफिजिक्स पे आऊंगा, जब मैं पीरियड्स के ऊपर आऊंगा ना, क्लासिकल पीरियड और रिलीजियस पीरियड और मॉडर्न पीरियड या पोस्ट मॉडर्न पीरियड, तो उसके अंदर मैं बताऊंगा कि इन टर्म्स के बारे में मुख्तलिफ रवैये बदल गए। ग्रीक ये कहते थे कि पहले आप मेटाफिजिक्स को डील करेंगे फिर आप आएंगे इल्म के ऊपर एपिस्टेमोलॉजी के ऊपर, मॉडर्निस्टों ने कहा नहीं पहले एपिस्टेमोलॉजी फिर मेटाफिजिक्स, तो वो मैं बताऊंगा। लेकिन अभी तीन मैंने सवाल
बताए, दो बातें हैं, एक को तो हम थ्योरी ऑफ नॉलेज एक्सेस करेंगे यानी कि खुदा है उस तक पहुंचना किस तरह से उसको एक्सेस कैसे करना है ये हमें थ्योरी ऑफ नॉलेज बताएंगे। उससे जो पहला आपने जो पॉइंट एलाबरेट किया सर वो
मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप मेटाफिजिक्स सिर्फ आपको ये बताती है कि हकीकतों की तरकीब का एक मेयार आपके पास होना चाहिए और हकीकतों को पहचानने का कोई पैमाना आपके पास होना चाहिए। जो हकीकतों को पहचानने का पैमाना है उसे हम कहते हैं ऑन्टोलॉजी, और हकीकतों को जो तरकीब देने का पैमाना है उसे हम कहते हैं कॉस्मोलॉजी। अब प्रॉब्लम यह है कि मैं कॉस्मोलॉजिकल और ऑन्टोलॉजिकल इल्म हासिल कैसे करूँ, उसके लिए तो मेरे पास कोई जरिया इल्म होना चाहिए ना, तो वो दूसरा सवाल है, दूसरी सतह का सवाल है कि अच्छा भाई मैं मान लिया कि हकीकत है कोई, मैं ये भी मान लेता हूँ कि हकीकतों की तरतीब होती है, मैं ये भी मान लेता हूँ कि हकीकतों को पहचानना जरूरी है हकीकतों को तरतीब देने के लिए, तो सवाल ये कि मैं हकीकत को पहचानूंगा कैसे, तो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ पोजिशन लेंगे, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे।
ठीक है जी, और
मैं
सवाल
इंसान का जो इस्तेमाल कर रहे हैं तो उठा दिया जाए जब भी मुमकिन हो सके तो इसको जो अखलाकी जो कदम है एक चीज को साबित किया जाए कि मुतबल
नहीं है बल्कि बदलती रहती है और दूसरे मेटल फिजिकल तमाम खा दिए मतलब आप लोग ये जो सोच और आप जो कह रहे कि मेटल फिजिकल हर
देखें सेक्युलरिज्म जो है कई तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं इडियोलॉजिकल, ये कोई एस्टैब्लिश नहीं है लेकिन मैं समझाने के लिए आपको बता रहा कि इडियोलॉजिकल सेक्युलरिज्म है और एक को हम कहते हैं ए इडियोलॉजिकल सेक्युलरिज्म। देखें एक तो पोजीशन ये है कि ये जो लोग कहते हैं ना कि अपनी मेटाफिजिकल प्रिजम्पशन को फर्स्ट या आपकी मेटाफिजिकल प्रिजम्पशन ये है कि इस कायनात को खुदा ने तख्लीक किया, एक दूसरे भाई है उनकी मेटाफिजिकल प्रिजम्पशन ये कि ये कायनात महज मटेरियल वर्ल्ड है और मैटर अल्टीमेट स्टफ है, देर इज नो गॉड, देर इज नो प्राइम मूवर, है दो बिल्कुल ऑपोजिट पोजिशन है ना। तो कह रहा है कि इस मसले का चूंकि हमारे पास कोई फलसफियाना हल मौजूद नहीं है कि ये कैसे साबित किया जाए कि कौन सी मेटाफिजिकल पोजीशन ठीक है, लिहाजा एक काम ये करो कि सारी मेटाफिजिकल पोजीशन को ठीक मान लो, आपका ये आप भी ठीक है, आप भी ठीक, आप भी ठीक, सब ठीक, सब ठीक। क्यों? इसलिए कि हमें पता ही नहीं है कि सही क्या है, इसलिए सबको ठीक मान लो। लेकिन अगर आप मैं ये कह दे ये कहते हैं ये कौन सी पोजिशन है, ये आमतौर पर ए इडियोलॉजिकल सेक्युलर पोजिशन है। ए इडियोलॉजिकल के हमने इसको माइनस कर दिया कि आपकी इडियोलॉजिकल पोजीशन ठीक है या इनकी, भाई की, किसकी, लिहाजा हम सबको बराबर सदा का मान लेते हैं, हम एक ए इडियोलॉजिकल पोजीशन पे चले जाते हैं, हम कोई इडियोलॉजिकल पोजीशन ही नहीं ले रहे, हम कह रहे हैं सबकी ठीक है। लेकिन हकीकत ये है कि जब आप ये कहते हैं कि तमाम मेटाफिजिकल पोजीशन ठीक है तो इसका मतलब है कि आप क्या कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि कोई मेटाफिजिकल पोजीशन ठीक नहीं है। If every metaphysical position is equally acceptable, that means that nothing is meaningful, equally meaningless है। इसका मतलब यह है कि आप इंसान की एक limitation को acknowledge कर रहे हैं। किस limitation को acknowledge कर रहे हैं? इस limitation को acknowledge कर रहे हैं कि इल्म की सतह पर वो इस काबिल नहीं है कि वो हक को वैसा देख सके जैसा कि हक है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कांट ने 16वीं 17वीं सदी के अंदर कांट ने क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन में एस्टैब्लिश किया कि ऑल्दो आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस रियलिटी बिकॉज आई ऑलवेज लुक एट रियलिटी थ्रू इररिमूवेबल स्पेक्टिकल्स ऑफ स्पेस एंड टाइम, मैं हकीकत को नहीं जान सकता लेकिन इसके बावजूद मैं हकीकत को वैसा बना दूंगा जैसा मैं हकीकत को बना देना चाहता हूं, मुझे ये तो नहीं पता हकीकत क्या है लेकिन मैं हकीकत को वैसा बना दूंगा जैसा मैं हकीकत को बना देना चाहता हूं। और अगर आप 17th सेंचुरी ऑनवर्ड वेस्टर्न डिस्कोर्स देखें तो उसने हकीकत को वैसा बनाने की कोशिश की है जैसा वो बनाना चाहते थे, उसके लिए उन्होंने जबरदस्त जिद्दोजहद। तो इशू ये है कि जब आप ये कहते हैं कि मेरी इल्मी सलाहियत ऐसी नहीं है कि मैं हकीकत का इदराक कर सकूं, तो क्या ये सवाल फरामोश कर दिया जाता है कि हकीकत कोई चीज नहीं है, या फिर आप हकीकत को वैसा बनाने की कोशिश करते हैं जैसा कि आप हकीकत को बना देना चाहते हैं? इसका मतलब ये है कि ये सवाल फरामोश कर देने के बावजूद भी हकीकत से आप मफर मुमकिन नहीं है, यू नो व्हाट आई मीन। इसलिए हम कहते हैं कि ये इडियोलॉजिकल पोजिशन है, सेक्युलर की एक इडियोलॉजिकल पोजिशन होती है। जब वो ये कहता है कि तमाम मावाद और तबियाती तस्वुरात एक ही सतह के हैं तो इसका मतलब है वो कहता है कि तमाम मावाद और तबियाती तस्वुरात यकसा तौर पर नॉन सेंसिकल है, लिहाजा इन फॉरगेट अबाउट इट एंड वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट आवर ओन मेटाफिजिक्स ऑन द बेसिस ऑफ आवर ओन रैशनैलिटी। ये एक बजाते खुद एक मेटाफिजिकल पोजिशन है जो जो हमारा ख्याल है जो हम कहते हैं। तो पहली बात तो ये कि अगर आप ये बात मानते हैं कि forget about metaphysics, तो क्या उसके नतीजे में वेस्टर्न सिविलाइजेशन की डोमिनेशन एस्टैब्लिश नहीं होती? ये किस बुनियाद पे वो ऑपरेशन फ्रीडम एस्टैब्लिश कर रहा है इराक के अंदर? किस बुनियाद पे 8 लाख इंसान मार दिए विदाउट नोइंग रियलिटी? हाउ कुड यू डू दैट? किस बुनियाद पे तुम 8 लाख इंसानों को कत्ल कर सकते हो जब तुम्हें ये पता ही नहीं है हकीकत क्या है? क्यों डंडा लेके दौड़ रहे हो भाई पूरी दुनिया में जब तुम्हें ये पता नहीं है कि हकीकत? इसका मतलब है तुम्हें पता है हकीकत क्या है, कम से कम तुम्हें ये पता है कि जो जिस चीज को ये हकीकत कहते हैं वो हकीकत नहीं है, कम से कम ये तो पता है ना तुम्हें। इफ यू नो दैट یو ول ڈو دیٹ. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم کسی کی جان لے لو بغیر یہ جانے کی حقیقت کیا ہے؟ یو نو وٹ آئی مین. تو یہ کہنا, یہ جو سیکولر جو ہمارے یہاں اپالوجیٹکس ہیں, ہمارے یہاں لوگ اپالوجیٹک اس لیے ہیں کہ ہمارے یہاں لوگ دو طرح کے لوگ ہیں. ہمارے یہاں ایک تو وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم بہت پیچھے رہ گئے. اس کو ہم کہتے ہیں بلیٹڈ کانشیسنس. ہم ایک ٹرین سے پیچھے چھوٹ جانے والے لوگ جو بھاگ رہے ہیں ٹرین کے پیچھے, ٹرین کو نظر آ جائے بھاگ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں اب ہم پہلے ٹرین میں چڑھ جائیں پھر بیٹھیں گے, پھر سوچیں گے. ابھی نہیں سوچا, ابھی تو بھاگ کے ٹرین میں چڑھنا ہے. اس کے لیے ہمیں بھاگنا ہے, گدھے پہ بیٹھنا ہے, گھوڑے پہ بیٹھنا ہے, ہوائی جہاز پہ بیٹھنا ہے, ٹرین پہ چڑھنا ہے سب سے پہلے. یہ بلیٹڈ کانشیسنس کی بنیاد پہ وہ فراموش کرنا چاہتے ہیں اس سوال. وہ کہتے ہیں کہ بھائی ویسٹرن میٹا فزکس کچھ بھی ہو, اس نے دنیا میں ڈومینیشن تو اسٹیبلش کر لیا نا, صحیح ہے. اس کا جو انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ بہتر ہے, اس کے یہ سب کچھ بہتر ہے, اس کا لوگ زیادہ وہاں پہ لوگ اس لیے مر جاتے ہیں کہ زیادہ کھاتے ہیں, اور ہمارے یہاں لوگوں کو کھانے کو نہیں ہے. تو یعنی کہ وہاں انہوں نے سب لوگ ماشاء اللہ لائن میں کھڑے ہوتے ہیں اور جو ہے شرافت سے زندگی گزارتے ہیں, بہت اچھے ٹائپ کے. تو یہ اگر میٹا فزکس کو بھول بھی جاؤ تو ان کی ڈومینیشن تو اسٹیبلش ہو گئی ہے. تو اس میکینیکل لائف ورلڈ کو لے کر اپنی میٹا فزکس کے ساتھ فٹ ان کرنے کی کوشش کرو. یہ ایک ایڈ ہاکزم ہے, ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. سر سید نے جب علی گڑھ بنایا نا تو علی گڑھ کی آپ بلڈنگ جا کے دیکھیں ایگزیکٹلی ویسی ہے جیسی کیمبرج کی بلڈنگ ہے. بلڈنگ کا اسٹرکچر تک وہی ہے. ان کا خیال تھا کہ اس طرح کی بلڈنگ کا انسانی ذہن پہ کچھ خاص قسم کا اثر ہوتا ہے جس میں بڑے عالم فاضل ٹائپ کے لوگ نکلتے ہیں. صحیح میں بتا رہا ہوں, سیریسلی. لیکن انہوں نے خود ایکنالج کیا کہ جو لوگ نکلے وہ اس سطح کے نہیں تھے جیسا انہوں نے تصور کیا تھا, جو وہ سوچتے تھے وہ ویسا نہیں ہوا. تو اب یہ بات ہے کہ ہاں میٹا فزکس کل سوال کو ابینڈن کرنے کی دلیل کیا ہے. دلیل یہ ہے کہ آپ کے پاس علم نہیں ہے, تو بھائی آپ ایکنالج کریں نا کہ ہماری میٹا فزکس ویک ہے, ہماری میٹا فزکس قابل نہیں ہے کہ ہم سپیریئر ثابت کر سکیں. یعنی کہ 17th-19th century تک تو ویسٹرن فلاسفرز کہتے تھے نا کہ ہمارے پاس ایک سپیریئر میٹا فزکس موجود ہے. ڈیکارٹس کی ہے یا اسپینوزا کی ہے یا لائبنیز کی ہے یا فیکٹے کی ہے یا کانٹ کی ہے یا ہیگل کی ہے یا مارکس کی ہے. حضرل کے آنے کے بعد اس نے کہا, حضرل نے کہا بھائی کیا تم چکر چلائے, وہ میٹا فزیکل پوزیشن ڈیفینڈیبل نہیں ہے, نہیں کر سکتا ڈیفینڈ. اس کے بعد پوسٹ ماڈرنسٹوں نے آگے کہہ دیا کہ کوئی میٹا فزیکل پوزیشن ہوتی نہیں, علم ہی نہیں تمہارے پاس, تم تو جہالت کے پردے کے پیچھے بیٹھ کے سب چیزوں کو دیکھتے ہو. یو آر لوکنگ ایٹ ریالٹی بہائنڈ دا ویل آف اگنورینس. تو جب ان کے پاس اپنی انسٹیٹیوشنز کا میٹا فزیکل ڈیفینس نہیں رہا تو وہ آپ سے کہتے ہیں تمہارے پاس بھی ڈیفینس نہیں, تمہارے پاس تو انسٹیٹیوشن ہی نہیں. ہمارے پاس تو انسٹیٹیوشن ہے جن کو ہم 200 سال سے پریکٹس کر رہے ہیں, اب ہمارے پاس نہیں ہے اس کا ڈیفینس. لہذا تمہارے پاس تو انسٹیٹیوشن بھی نہیں ہے, تم ڈیفینس کیا کرو گے؟ لہذا تم بھی بھول جاؤ, ہم بھی بھول جاتے ہیں. لیکن انسٹیٹیوشن تو جو پریویل کر رہے ہیں وہی میٹا فزکس پریویل کرے گی. تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی انڈیویجول جب اپنی زندگی کو میننگ فل نہیں بنا سکتا وداؤٹ ایڈریسنگ میٹافیزیکل کوشچن, ہاؤ کوڈ اٹ بی پاسبل ٹو ڈیولپ اے سوسائٹی وداؤٹ میٹافیزیکل روٹ, ہاؤ کوڈ اٹ بی پاسبل دیٹ یو گوئنگ ٹو کنسٹرکٹ اسٹیٹ نیشن اسٹیٹ وداؤٹ اٹس اون میٹافیزیکل پرزمپشن, ہاؤ کوڈ یو اسٹیبلش اے سولائزیشن وداؤٹ ہیونگ اٹس اون میٹافیزیکل پرزمپشن. دیکھیں نا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ریلیجن کو مائتھوس, دیکھیں نا میں فرض کیا کہ میں کہتا ہوں کہ میں کل سے ہاتھی کو الو کہنا شروع کر دوں, تو یہ ایک ورلڈ کی سطح پہ ہے. لیکن ہاتھی تو ہاتھی رہے گا نا, ہاتھی ہاتھی رہے گا. وہ کہیں گے اچھا آپ ہاتھی کو الو کہتے ہیں, ٹھیک, تو بس ہمارے یہاں تو ہاتھی کو ہاتھی کہا جاتا. تو میتھوس کیسے کہا, کیرن کی بات تم کر رہے ہو نا, وہ کہتا ہے مائتھوس ہے. کیرن جو ہے وہ ایک ویسٹرن سویلائزیشن کے اندر پل کر بڑھی ہوئی ہے نا, تو ظاہر ہے اس کی اپنی پرٹیکولرٹی اور اس کا ایک اپنا ہسٹوریکل ایکسپیرینس ہے. تو ریلیجن کو مائتھوس کہہ دینے کے بعد, کلیکٹیو میموری کہہ دینے کے بعد کچھ لوگوں کی کیا اس کی افیکٹونیس ختم ہو جاتی ہے؟ यू नो व्हाट आई मीन। तो इशू ये है कि जो लोग ये कहते हैं, ये आज से थोड़ी कह रहे हैं, बहुत सालों से कह रहे हैं, लेकिन क्या रिलीजन इररेलेवेंट हो गया? और जो प्रॉब्लम वेस्ट के साथ प्रॉब्लम ये है कि रिलीजन को उन्होंने तबाह किया है, क्रिश्चियनिटी को बहुत जिद्दोजहद के बाद, उस जिद्दोजहद के बाद तबाह करने के बावजूद कुछ ना कुछ शक्ल में रिलीजन बाकी है उन माशरों के अंदर, यू नो व्हाट आई मीन। तो रिलीजियस अगर कोई इंसान उसको माइथॉस कहता है तो ठीक, अपना ख्याल, इवेंचुअली तो वो भी मर ही जाएगा।
ईसाइयत के बारे में जो आपने कहा कि मगरिब ने उसको जो है तबाह किया है, तो क्या आप यही समझते हैं मतलब ईसाइयत की तबाही के जो असबाब थे वो खुद उसकी बुनियादों में जो है मौजूद थे, और खास तौर पर जो मतलब यूनानी लॉजिक और साइंस से जो उनका मतलब हद से ज्यादा जो मतलब असर पजीरी थी
जी बिल्कुल,
उसकी वजह से उनकी और तरीके जो उनके मतलब
जब हम क्रिश्चियन पीरियड को देखेंगे तो मैं उसको पहले क्रिश्चियन पीरियड भी बताऊंगा और फिर स्कॉलास्टिसिज्म में तीन बड़े थिंकर हैं उनके, सेंट ऑगस्टाइन, एक्विनस और एंजलन, तीनों के आपको यानी कि मिडिवल स्कॉलास्टिक फिलोसफी के मेसिक जो पोर्शन है वो भी आपको बताऊंगा। तो मैं ये समझता हूँ कि दो सतह पर उसकी प्रॉब्लम थी। पहली बात तो ये कि क्या क्रिश्चियनिटी एक स्टेट थियरी अपने अंदर रखती थी या नहीं रखती, बुनियादी तौर पर स्टेट थियरी उसके पास थी नहीं। जो ब्यूरोक्रेटाइजेशन उसने की वो पूरी की पूरी रोमन ब्यूरोक्रेटाइजेशन थी, जो उसने स्टेट के लेवल पर भी की और रिलीजन के लेवल पर। अगर आप उसका पूरा रिलीजियस स्ट्रक्चर देखें तो उसकी कोई तारीख नहीं है रिलीजियस स्ट्रक्चर की। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का जो मैकेनिज्म था वो बिल्कुल वैसे ही था जैसे रोमन स्टेट का मैकेनिज्म होता है, जिस तरह उसको मॉन्क्स हैं, मॉन्क्स के ऊपर बिशप प्रीस्ट हैं, प्रीस्ट के ऊपर बिशप हैं, बिशप के ऊपर आर्च बिशप हैं, आर्च बिशप के ऊपर कार्डिनल्स हैं, कार्डिनल्स के ऊपर पोप हैं। तो इसी तरीके से बिल्कुल रोमन स्टेट का भी यही स्ट्रक्चर था। तो दो स्ट्रक्चर उन्होंने पहले दिन से खड़े कर लिए। तो असल तबाही तो उस वक्त शुरू हुई जब स्टेट के साथ वो रिकनसाइल की, जब स्टेट के साथ रिकनसाइल की तो आपको सजा भी देनी है, आपको पनिश भी करना है, लोगों को माफ भी करना है, लोगों को जंगें भी करनी है। तो उसकी तो कोई सुन्नत मौजूद नहीं थी हजरत ईसा की जिंदगी में भी, और तो जो काम हजरत ईसा करने के लिए तशरीफ लाए थे वो करके गए थे, लेकिन उससे जो उसको जो स्ट्रेच करते हैं ना, ओवर स्ट्रेच जब करते हैं किसी चीज को तो वो क्रम्बल करती है। ओवर स्ट्रेच किया क्रिश्चियनिटी को, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी जो अच्छाइयां थी उस मोरालिटी की, उसने कुछ अर्से तक तो असर रखा, माशरे को पकड़ के रखा बहुत कुछ, लेकिन जाहिर है कि बाद में जो रोमन ब्यूरोक्रेटाइजेशन की प्रॉब्लम थी वो उसके अंदर भी है। कलेक्शन उसके ऊपर बुनियादी एतराज ये है कि उसने हर उस चीज को डिकंस्ट्रक्ट किया जिससे सेलेक्टिव है वो डिकंस्ट्रक्शन के मामले में। जो वो भाई जिनके डेरिडा के बारे में नहीं पता, डेरिडा एक डिकंस्ट्रक्शनिस्ट फिलोसोफर है जो अभी जिंदा है, और वो ये कहता है कि बुनियादी तौर पर उसका फलसफा ये है कि मीनिंग एग्जिस्ट नहीं करते। मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ एक वर्ड है और उसको आप समझ रहे हैं एक वर्ड के जरिए, मीनिंग कहाँ है, मीनिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, मीनिंग्स आर नॉट पॉसिबल बुनियादी तौर पर उसका। और वो ये कहता है कि किसी भी टेक्स्ट को लेकर उसके अंदर जो मीनिंग है उसको डिकंस्ट्रक्ट किया जाए, उसको बताया जा सकता है कि असल में कोई भी मीनिंग मौजूद नहीं है। वो कहता है कोई भी लफ्ज जो होता है जब आप उसे पढ़ते हैं तो आधे मीनिंग वहां पे मौजूद ही नहीं होते, और आधे मीनिंग जो मौजूद होते हैं वो नहीं होते जो आप समझ रहे हैं। हाफ ऑफ इट इज नॉट देयर एंड हाफ ऑफ इट इज नॉट दैट। तो डेरिडा जो है बुनियादी तौर पर मैंने आपको बताया ना कि बुनियादी तौर पर ये जो मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जो मेटाफिजिकल प्रिजम्पशंस होती हैं वो अफेक्ट करती हैं आपकी अप्रोच और आपकी मेथडोलॉजी को। डेरिडा का जो प्रॉब्लम है वो उसकी जो रूट्स हैं वो सिर्फ इस बात पे नहीं है, बुनियादी तौर पर हाइडेगेरियन रूट्स हैं उसकी। और हाइडेगर ये कहता है कि इंसान चीजों को मीनिंग देता है इंटेंशनली, और किसी चीज के कोई भी मीनिंग वो दे सकता है। अगर किसी चीज के मैं कोई भी मीनिंग दे सकता हूँ, उसका मतलब है किसी चीज के कोई मीनिंग नहीं देते। तो बुनियादी तौर पर हाइडेगेरियन रूट है उसकी। और जाहिर है कि जब आप इस मेथोडोलॉजी को लेकर अप्लाई करेंगे तो आप किसी भी लिटरेचर को डीकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इशू ये है कि डरीडा अगर क्रिश्चियनिटी के बारे में ये राय रखता है तो जाहिर है कि वो तो स्पेसिफिक है उसके फलसफे से। अब उसने वो मेथोडोलॉजी क्यों जुडाइक ट्रेडिशन के ऊपर अप्लाई नहीं किया, जुडाइक टेक्स्ट? तो पहली बात तो ये है कि जुडाइक टेक्स्ट जो है वो बुनियादी तौर पर इतना स्पेसिफाई हुआ है नेशनलिस्ट कॉन्टेक्स्ट के अंदर कि वो एज ए थ्रेट लिया ही नहीं जाता एज फार एज दी एप्रिसिएशन ऑफ टैक्स इज कंसर्न। देखिये मसला ये होता है कि कौन सा टैक्स पढ़ा जा रहा है। जुडाइक टैक्स नहीं पढ़ा जाता उस तरह जिस तरह बाइबल पढ़ी जाती है। तो वो बुनियादी तौर पर जो उसकी सिलेक्शन होती है, जैसे डास कैपिटल को वो डीकंस्ट्रक्ट करता है, सार्थ को डीकंस्ट्रक्ट करता है, जो पढ़े जाते हैं, यू नो, हो सकता है किसी ने कुरान को भी डीकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन उसको पता है कि मुसलमान मार ना दें, शायद इस वजह से वो नहीं करता। लेकिन इशू ये है कि जुडाइक जो ट्रेडिशन है वो चूंकि नेशनल स्पेसिफिक हो गया, इसलिए उसकी तरफ उसमें शायद तवज्जो नहीं दी, या शायद वो जीव हो, ये तो आप अल्लाह आलम के सवाब के वो क्या उसकी वजूहत है। लेकिन ये कि जाहिर है कि बहुत सारे लोगों के बारे में ये राय है, हमारे प्रोफेसर थे वो कहते थे विट्गेंस्टाइन इतना बड़ा थिंकर नहीं था, लेकिन चूंकि वो जीव था उसको बड़ा थिंकर बना दिया, और रस क्या कहते हैं मूर उससे बड़ा थिंकर था लेकिन चूंकि वो जीव नहीं था इसलिए उसको बड़ा थिंकर नहीं। हाइडेगर इतना बड़ा थिंकर है, बहुत बड़ी बड़ी किताबों के अंदर आपको हाइडेगर नहीं मिलता, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ये इल्जाम था कि वो नाटजी के साथ था। तो बहुत सारे यानी कि स्टीव मिटवीन की किताब है एग्जिस्टेंशियलिज्म के ऊपर, उसमें हाइडेगर ही नहीं है। मैरी वार्ने की किताब है सिक्स एग्जिस्टेंशियल, उसमें हाइडेगर नहीं है, जो सबसे बड़ा थिंकर है एग्जिस्टेंशियलिज्म का, क्योंकि वो एंटी ज्यू समझा जाता, हालांकि वो था नहीं। उसके ऊपर जब केस चला तो ज्यूज ने आकर उसकी गवाही दी कि ये एंटी ज्यू नहीं था, मार्टिन बूबर ने और इसने मार्क्यूज़े ने, दोनों ज्यूज थे, दोनों ने आके ड्यूरिंग ट्रायल उसके खिलाफ जो केस बना था उसकी गवाही दी। तो वो हम देखेंगे क्रिश्चियनिटी को देखेंगे। ठीक है,
ठीक है,
ठीक है,
ठीक है,
ठीक है।